डॉक्टर टेड हिल्डेब्रांट नीति वचन जोड़े सत्र दो 2024 टेड हिल्डेब्रांट जर्नल ऑफ बाइबिलिकल लिटरेचर 107.2 1988 207 से 224। यह डॉक्टर टेड हिल्डेब्रांट और नीतिवचन युग्मों पर उनकी शिक्षा है। यह सत्र संख्या दो है, 5 जोड़े विस्तार से। नीतिवचन 26.4-5, नीतिवचन 15.8-9, नीतिवचन 10.16-17, नीतिवचन 13.21-22, नीतिवचन 15.1-2 जोड़ी बनाने की तकनीकों के साथ। नीतिवचन जोड़े पर आज की हमारी प्रस्तुति में आपका स्वागत है। यह पिछली बार की हमारी चर्चा का एक सिलसिला है, जहां हम दिखा रहे थे कि कहावतें तनाख या पुराने नियम के बाकी हिस्सों से भिन्न थीं। तो आज हम वास्तव में नीतिवचन में जाने जा रहे हैं और नीतिवचन अध्याय 10 से 29 देखेंगे। ये वाक्य कहावतें हैं और इसलिए एक के बाद दूसरी कहावत, दूसरी कहावत के बाद दूसरी कहावत है। क्या वे सभी बिखरे हुए हैं और बस एक साथ फेंक दिए गए हैं और यह यादृच्छिक है, यह जानबूझकर किया गया है, या वहां कोई स्पष्ट क्रम है? और क्या वह आदेश इस बात को प्रभावित करता है कि हम एक कहावत की दूसरी के बाद व्याख्या कैसे करते हैं? हमने अक्सर कहा है कि संदर्भ अर्थ निर्धारित करता है। एक लौकिक कहावत का संदर्भ क्या है? एक कहावत से दूसरी कहावत, क्या वे एक दूसरे से जुड़ते हैं और क्या वे उनकी व्याख्या के तरीके को प्रभावित करते हैं? लेकिन इससे पहले कि हम ऐसा करें, जब हमने नीतिवचन अलग अलग होते हैं प्रस्तुतिकरण किया, तो किसी ने ऑनलाइन एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और उन्होंने कहा, यह वास्तव में गहराई से था और आपने साबित कर दिया है कि नीतिवचन क्या नहीं है, लेकिन नीतिवचन क्या है और हम इसका अध्ययन कैसे कर सकते हैं? नीतिवचन, मेरा सुझाव यह है कि आप biblicallylearning.org से जुड़े और फिर आप इस अगली प्रस्तुति का अनुसरण करें, जहां मैं बताऊंगा कि मैं इसमें कैसे कूदूंगा। वेस्ट कोस्ट पर टिम मैके नाम का एक लड़का है और उसने वह काम किया है जिसे बाइबल प्रोजेक्ट कहा जाता है, और उसने जो किया वह बाइबल की प्रत्येक प्रकार की पुस्तक को पढ़ना और 5 मिनट में उस पुस्तक का सारांश देना था। अब जब मैंने पहली बार इसके बारे में सुना तो मैंने सोचा, यह पागलपन है। नीतिवचन की पुस्तक पर 5 मिनट, क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? और मैंने इसे बहुत गंभीरता से सुना और अचानक मैंने सोचा, इस आदमी ने इसे पार्क के बाहर मारा है। 5 मिनट में उसने वास्तव में नीतिवचन की पुस्तक के साथ साथ अन्य पुस्तकों का भी बहुत सारा सार समझ लिया। तो शुरू करें। यदि आप biblicallylearning.org पर जाते हैं तो वे हमेशा बाइबल प्रोजेक्ट सारांश के साथ प्रत्येक पुस्तक के शीर्ष पर शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत टिम मैके द्वारा बाइबल प्रोजेक्ट से होती है। उसके अंतर्गत फिर 4 व्याख्यान हैं। डॉक्टर फ्रेड पुटनम नामक एक साथी के 4 व्याख्यान हैं और उन्होंने नीतिवचन की पुस्तक और एक तरह के पारंपरिक परिचय का परिचय देते हुए 4 व्याख्यान दिए। यही वे 4 व्याख्यान हैं जो उन्होंने किए। उसके बाद 2 महान विद्वान हुए, एक नॉट हेम जो नीतिवचन पर दुनिया के अग्रणी विशेषज्ञों में से एक हैं, ने काव्यात्मक दृष्टिकोण और कल्पनाशील दृष्टिकोण से नीतिवचन की पुस्तक का अध्ययन करते हुए 20 व्याख्यान दिए और नीतिवचन पर 20 व्याख्यानों की एक अद्भुत श्रृंखला बनाई। फिर कनाडा में मैकमास्टर विश्वविद्यालय से गस कुंकेल ने नीतिवचन पर 22 व्याख्यानों की प्रस्तुति दी, और इसलिए वे दोनों वास्तव में अलग अलग सामग्री को कवर करते हैं, और उन दोनों को मिलाकर आपको नीतिवचन की पुस्तक में 2 अलग अलग दृष्टिकोणों से लगभग 42 व्याख्यान मिलेंगे। डॉक्टर डैन ट्रेयर नाम का एक साथी है जो व्हीटन कॉलेज में है और वह एक धर्मशास्त्री है, और उसने नीतिवचन की ओर देखा। उन्होंने ईसाई जीवन के लिए नीतिवचन पर 4 व्याख्यान दिए और इसलिए डैन ट्रेयर ने उसके बाद ईसाई जीवन पर अपनी सामग्री को देखा और नीतिवचन की पुस्तक ईसाई जीवन के धार्मिक परिप्रेक्ष्य के साथ कैसे फिट बैठती है। एक साथी हैं डॉक्टर काइल डनहम, जिन्होंने नीतिवचन की संरचना पर 2 व्याख्यान दिए और फिर मैंने नीतिवचन 26:4-5 पर कुछ काम किया है और फिर नीतिवचन अलग हैं पर 1 काम किया है। आज हम नीतिवचन 26:4-5 से जुड़ते हुए मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर देने जा रहे हैं। मूर्ख को अन्य जोरों के साथ उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर न दें। आज मैं जो स्थापित करने जा रहा हूं वह यह है कि नीतिवचन 10-29 में कई बार वे एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं, उन्हें एक साथ नहीं रखा जाता है, लेकिन ये जोड़े हैं। और इसलिए आप एक कहावत को देखें, इसके चारों ओर देखें, इसके पहले क्या आया, इसके बाद क्या आया, और देखें कि क्या वहां कोई जोड़ी प्रभाव है, और फिर देखें कि जोड़ी एक दूसरे को कैसे प्रभावित करती है और वे इसे कैसे बारीक करते हैं। तो आज हम इसी पर गौर करेंगे। तो हम जो प्रश्न पूछेंगे वे हैं, क्या नीतिवचन 10-29 में लौकिक कहावतें बस एक साथ जोड़ दी गई हैं या वहां कोई क्रम है। जब लौकिक कहावतों की बात आती है तो संदर्भ का क्या मतलब होता है? जब हम लौकिक कहावतों की व्याख्या करते हैं तो क्या हमें कहावत की बेहतर समझ हासिल करने में मदद के लिए उनके आसपास नीतिवचन का उपयोग करना चाहिए? और दूसरा, क्या जिन लोगों ने लौकिक कहावतें एकत्र की उन्होंने उन्हें इस तरह से समूहित किया कि हमें उन्हें बेहतर ढंग से समझने में मदद मिल सके? दूसरे शब्दों में, हमें कहावत का लेखक मिल गया है। कई बार हम नहीं जानते कि सटीक लेखक कौन है। सुलेमान हाँ, लेकिन सुलेमान एक संग्रहकर्ता भी था। हिजकियाह के आदमी हाँ, लेकिन वे मूल रूप से सोलोमोनिक संग्रह के संग्रहकर्ता और संपादक थे। तो हमें लेखक का इरादा, मूल व्यक्ति, चाहे वह प्राचीन काल का लोक हो, कहावत और इसलिए लेखक का इरादा मिल गया है। लेकिन फिर कलेक्टर की मंशा का क्या? जब वह इन चीजों को एक साथ रख रहा है, जब वह संग्रहों का संपादन कर रहा है और वह कनेक्शन देख रहा है और वह उन्हें एक साथ रख रहा है, तो जिस संग्राहक ने भी लिखने के लिए प्रेरित किया है वह वास्तव में सोलोमन की 3000 कहावतों से धर्मग्रंथ लिख रहा है। वह यहाँ कुछ 100 लोगों को खींच रहा है और वह वहां उन लोगों को चुन रहा है और फिर उन्हें एक साथ रख रहा है। तो संग्राहक का इरादा भी है और लेखक का भी। हमें उन दोनों को देखना होगा। संग्राहकों ने लौकिक कहावतों को एक साथ कैसे बांधा? उन्होंने उन्हें एक साथ कैसे बांधा? उन्होंने किस प्रकार की तकनीकों का उपयोग किया? काव्य में तकनीक का महत्व है। कविता को समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि इसका अर्थ क्या है, न कि इसका क्या अर्थ है, बल्कि इसका अर्थ क्या है, यह कविता में क्या कहती है, यह कैसे कहती है। कविता को चुनना बहुत महत्वपूर्ण है। मैं यहाँ कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ। जब मैंने नीतिवचन अध्याय 10-29 तक पढ़ा तो मैंने पाया कि जोड़ी बनाने के 62 उदाहरण थे। ये 568 में से 124 श्लोक हैं। अब इन सभी आंकड़ों के लिए क्षमा करें, लेकिन अध्याय 10-29 तक 568 छंद हैं और उनमें से 124 जोड़े में हैं। यह अध्याय 10-29 तक 21% है। 21% इस युग्मन घटना को प्रकट करते हैं। तो फिर मैं सूचीबद्ध करता हूं और यहां वीडियो पर जोड़े गए 124 छंदों की एक सूची डालूंगा। और इसलिए आप इस प्रकार की किराने की सूची को अध्याय 10-29 तक जाते हुए देख सकते हैं, जो कि जोड़े गए छंद हैं जो मुझे वहां मिले, और आप देखेंगे कि उनमें से काफी संख्या में हैं। तो यह केवल बिना सोचे समझे एक साथ फेंका गया मामला नहीं है। ये जोड़े बार बार घटित होते हैं। वस्तुतः 21% जोड़े में पाए जाते हैं। अब युग्म घटना के अन्य रूप और संग्रह के अन्य रूप भी हैं। संग्राहकों ने उन्हें कैसे एकत्र किया? एक एक त्रियाद होगा जहां आपके पास केवल दो नहीं हैं, जोड़े 21% हैं, लेकिन आपके पास इनमें से कई त्रियाद हैं। और इसलिए उदाहरण के लिए नीतिवचन अध्याय 23:26 से 28 एक त्रय है। अध्याय 24:10-12 एक त्रय है। और इसलिए उनमें एक पंक्ति में तीन छंद हैं। फिर कुछ ऐसे हैं जिन्हें मैंने पृथक जोड़े कहा है। दूसरे शब्दों में दो श्लोक हैं जो जुड़े हुए हैं, लेकिन वे अलग हो गए हैं। एक बीच में है जो फिट नहीं बैठता है। लेकिन फिर आपके पास एक यहाँ और एक यहाँ है, और फिर आपके पास एक ऐसा प्रकार है जो दोनों के बीच प्रवाहित नहीं होता है। और इसलिए मुझे इसका एक उदाहरण पढ़ने दीजिए। नीतिवचन अध्याय 10:8-10। तो हम 8, 9 और 10 पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन ध्यान दें कि 8 और 10 बहुत मजबूती से जुड़ेंगे, लेकिन 9 नहीं जुड़ेंगे। और इसलिए यह मन में बुद्धिमान है। नीतिवचन अध्याय 10:08 जो मन में बुद्धिमान है वह आज्ञा पाएगा, परंतु बकवाद करने वाला मूर्ख नाश हो जाएगा। आयत 9, जो खराई से चलता है वह निडर चलता है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है वह पकड़ा जाएगा। तो ये चलने की बात हो रही है। पद 10, जो आँख में सेंध लगाता है वह विपत्ति लाता है, और बकबक करने वाला मूर्ख नाश हो जाता है। क्या हमने यह बात पहले नहीं सुनी थी? बकवास करने वाला मूर्ख बर्बाद हो जाता है का उल्लेख 10b में किया गया है। और यह भी है कि ठीक यही वाक्यांश 8b में उल्लिखित है। तो 8b और 10b बिल्कुल एक जैसे हैं, जो उन दो कहावतों को जोड़ता है जो चल रहा है ईमानदारी के साथ चलता है। तो यह एक प्रकार की टूटी जोड़ी या विभाजित जोड़ी, एक अलग जोड़ी है। और इसके अन्य उदाहरण भी हैं। हमें उनमें से कुछ वहां सूचीबद्ध मिल गए हैं। वहां एक जोड़ा और एक है। तो नीतिवचन अध्याय 15:1-2 एक जोड़ी हैं। और फिर यदि आप नीचे जाते हैं तो 3 अपने आप नहीं जुड़ता है, बल्कि 4 एक तरह से जुड़ जाता है। तो आपको जो मिला है वह एक जोड़ी और एक, एक जोड़ी और एक है। और फिर मैंने आपको इसके कुछ उदाहरण दिए हैं। वह एक जोड़ा और एक अलग है। फिर वहां एक जोड़ा और एक है जो जुड़ा हुआ है। तो एक जोड़ी प्लस एक जो अलग है। दूसरे शब्दों में बीच में एक प्रकार होता है और फिर अगला युग्म में वापस चला जाता है। एक जोड़ा और एक जब उन्हें एक दूसरे से जोड़ा जाता है। नीतिवचन 10:16-17 एक जोड़ी हैं। और फिर पद 18 स्वयं जुड़ जाता है। नीतिवचन अध्याय 15:16-17 एक जोड़ी हैं, और श्लोक 15 उनके सामने के सिरे पर जुड़ा हुआ है। तो उनमें से कई जोड़े और तुरंत एक जोड़े हैं। और फिर हम उस पर आते हैं जिसे मैंने स्ट्रिंग्स कहा है, लौकिक स्ट्रिंग्स, जहां आपको एक पंक्ति में कई कहावतें मिलती हैं जो एक स्ट्रिंग बनाती हैं। संभवतः बेहतर वह है जो नट हेम ने किया है, उन्हें क्लस्टर कहकर। वह उन्हें अंगूर के गुच्छों की तरह देखता है। और इसलिए उन्होंने लिखा है, मेरा मानना है कि उनका शोध प्रबंध प्रकाशित हुआ था, लाइक ग्रेप्स ऑफ गोल्ड एंड सेट इन सिल्वर, लाइक ग्रेप्स ऑफ गोल्ड सेट इन सिल्वर। यह एक किताब है जिसे उन्होंने लिखा है, उनका शोध प्रबंध, जहां वह नीतिवचन, लौकिक कहावतों 10 और निम्नलिखित के माध्यम से जाते हैं और इन समूहों को दिखाते हैं और ये कहावतें क्लस्टर कैसे काम करते हैं। और इसलिए यह एक बहुत ही दिलचस्प किताब है। उनकी दूसरी किताब जो शानदार है, द पोएटिक इमेजिनेशन इन पॉलिसीज है। और इसलिए उन्होंने दो पुस्तकें प्रकाशित की हैं, द पोएटिक इमेजिनेशन इन नीतिवचन, वास्तव में नीतिवचन में दोहराए गए तत्वों पर एक अद्भुत काम है और यह आनंददायक है और आपकी कल्पना को उत्तेजित करेगा जैसा कि होना चाहिए। अब पिछली बार हमने नीतिवचन 26, 4 और 5 के बारे में बात की थी। वे विरोधाभासी प्रकार की नीतिवचन थे और हमने देखा कि वर्मोंट में वुल्फगैंग मीडर नामक एक व्यक्ति जो संभवतः दुनिया का अग्रणी विशेषज्ञ है और इस पारेमियोलॉजी का अध्ययन करता है जो कहावतों का अध्ययन है, वह न जाने कितनी भाषाएं पढ़ता है। जाहिर तौर पर वह रूसी, जर्मन और अंग्रेजी पढ़ाते हैं। वह वर्मोंट में पढ़ाते हैं और कई अन्य भाषाएं जानते हैं और वह उन्हें दुनिया की कहावतों के संग्रह से बाहर निकालता है, वह खींचता है और परिभाषित करने की कोशिश करता है कि कहावत क्या है। अधिकांश संस्कृतियों में ये मौजूद हैं और इसलिए उन्होंने बड़ा सवाल पूछा। उसका बाइबल अध्ययन से कोई संबंध नहीं है, लेकिन वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीतिवचनों का अध्ययन करता है और फिर उसमें से सिद्धांत निकालता है और इसलिए उन्होंने देखा कि उन्होंने कितनी अद्भुत छोटी सी किताब लिखी थी जिसका नाम ट्विस्टेड पॉलिसीज था और ये कहावतें जैसे अनुपस्थिति दिल को बड़ा कर देती है। तो आप सभी जानते हैं, मेरी पत्नी जब मैं मदरसा में था वह बफेलो स्टेट कॉलेज में वापस आ गई थी और इसलिए हम अलग हो गए। अनुपस्थिति दिल को और अधिक स्नेहमय बना देती है या यह अनुपस्थिति दिल को भटका देती है। मुड़ी हुई कहावत या यह दृष्टि से उझल, दिमाग से उझल है। अब वह बफेलो में है, मैं फिलाडेल्फिया क्षेत्र में हूँ और यह दृष्टि से उझल, दिमाग से उझल है। आपके पास कहावतें दोनों दिशाओं और चीजों पर जा रही हैं और इसलिए आप मेरी बेटी को ले आइए। मैंने अपने बच्चों को सुबह जल्दी उठाने की कोशिश की, जाहिर तौर पर मैं असफल रही और लोग बस इसके साथ ही पैदा होते हैं। कुछ लोग रात के लोग हैं, कुछ लोग सुबह के लोग हैं। मैं एक प्रातःकालीन व्यक्ति हूँ और इसलिए मैं अपनी बेटी के पास जाता हूँ। कीड़ा शुरुआती पक्षी को ही मिलता है और बिना नजरे झुकाए, मेरी बेटी वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, बिना नजरे हिलाए वह मेरी ओर मुड़ती है और कहती है, हाँ शुरुआती पक्षी को कीड़ा मिलता है लेकिन दूसरे चूहे को पनीर मिलता है। और इसलिए हमारे बीच एक तरह से कहावतों का द्वंद्व चल रहा था। प्रारंभिक पक्षी को कीड़ा मिलता है, अब दूसरे चूहे को पनीर मिलता है, तो मैं बिस्तर पर ही रहूंगा। और इस तरह उसने इसे लिया। छलांग लगाने से पहले देखो, दूसरे शब्दों में किसी चीज में छलांग न लगाएं, छलांग लगाने से पहले आप देख लें। या इसके विपरीत कहावत है, जो झिझकता है वह खो जाता है, इसलिए आप इसका विश्लेषण करने में बहुत अधिक समय बिताते हैं, आप स्थिति खो देते हैं। या यह छलांग लगाने से पहले देखो है। तो वुल्फगैंग मीडर ने नीतिवचन में कुछ अद्भुत काम किया है और नीतिवचन कैसे चंचल हैं, लगभग एक दूसरे के आगे पीछे खेलते रहते हैं और हम हमेशा सोचते रहते हैं, क्या यह धर्मशास्त्रीय रूप से, प्रस्तावात्मक रूप से सत्य है या यह सत्य नहीं है। और इस तरह हमें ये सच्ची झूठी बात पता चली और हमने उस प्रकार की चंचलता को खो दिया है जो नीतिवचनों में होती है, जो वास्तव में आपको स्थितियों के बारे में अधिक गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए नीतिवचन 26, 4, मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर न देना, ऐसा न हो कि तुम भी उसके समान बन जाओ। इसलिए जब आप किसी मूर्ख को उत्तर देते हैं तो आप व्यक्तिगत जोखिम में पड़ जाते हैं और इसलिए मूर्ख को उत्तर न दो, ऐसा न हो कि तुम भी उसके समान बन जाओ, यानी यह आपके पास वापस आता है। अगले पद नीतिवचन 26, 5 में आप देख सकते हैं कि इन्हें एक साथ जोड़ा गया है। मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर दो, ऐसा न हो कि वह अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ठहरे। यदि तुझे मूर्ख की चिंता है तो मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर दे, ऐसा न हो कि वह अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ठहरे। दूसरे शब्दों में, अपनी नजर में बुद्धिमान होना मूर्ख होने से भी बदतर है। आप इसे फिर से कहते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। अपनी नजरों में बुद्धिमान होना, अभिमान, अहंकार, अपनी नजरों में बुद्धिमान होना मूर्ख होने से भी बदतर है। और वह कह रहा है, यदि आप किसी मूर्ख को अहंकार और घमंड में बदलने से रोक सकते हैं, तो शायद आपको ऐसा करना चाहिए यदि आप मूर्ख के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने बारे में और नुकसान के बारे में सोच रहे हैं, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि जब आप किसी मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार जवाब देंगे, तो कुछ लोग आपको भी उसके जैसा ही समझेंगे। और इसलिए उन दो कहावतों को एक के बाद एक रखा जाता है, उन्हें एक साथ जोड़ा जाता है। और इसलिए हॉगलुंड ने निष्कर्ष निकाला कि मूर्ख के साथ बातचीत करना बुद्धिमानों के लिए एक दायित्व और खतरा दोनों है। किसी मूर्ख को जवाब देना दायित्व है, लेकिन यह एक धमकी भी है। और आपको उन दोनों चीजों से अवगत होना होगा। इस प्रकार नीतिवचन अध्याय 26 छंद 4 और 5 एक कहावत जोड़ी के लिए जानबूझकर जोड़ा गया, एक साथ रखा। संयोजन दो नीतिवचन जानबूझकर, कोई भी इस पर बहस नहीं कर सकता। नीतिवचन 26 श्लोक 4 और 5 एक साथ चलें। बाकी लौकिक कैनन में ऐसा कुछ नहीं है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। वे अद्वितीय हैं, वे दोनों पहले स्थान पर अद्वितीय हैं, और वे ऐसे ही एक साथ चलते हैं। वहां कुछ भी नहीं है, यहां तक कि इसके करीब भी नहीं। इसलिए वे लौकिक जोड़ी को उसकी पुनरावृत्ति के साथ और एक निश्चित मात्रा में चंचलता और पैरोडी के साथ उपयोग करके बुद्धिमानों को उच्चक्रम की सोच और कल्पना की ओर धकेलने के लिए एकजुट होते हैं। आपको इस पैरोडी को याद रखना होगा, हो सकता है कि यहीं से बेबीलोन बी की शुरुआत हुई हो। वहां कलेक्टर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक पैरोडी है, न कि केवल मूल कहावत लिखने वाले का लेखकीय मूल लेखक, बल्कि अब जोड़ी के साथ कलेक्टर उन दोनों को एक साथ रख रहा है और अधिक गहराई से सोच रहा है कि एक मूर्ख के साथ व्यवहार करने में क्या उपयुक्त है। और नीतिवचन 26 एक से 12 मूलतः यह है कि आप किसी मूर्ख के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। तो इसे मूर्खों की पुस्तक कहता है, आप मूर्ख से कैसे निपटते हैं। तो फिर वे छंद युग्मित होकर बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं। अब मैं दूसरी जोड़ी पर स्विच करना चाहता हूं और हम 5 जोड़ियों से गुजरेंगे। हम 5 जोड़ियों के बारे में विस्तार से जाने जा रहे हैं, शायद थोड़ा अधिक विवरण, लेकिन फिर भी हम उनके बारे में विस्तार से जानेंगे और फिर हम उपयोग की गई विभिन्न तकनीकों की सतही संरचना करेंगे। चीजों को जोड़ने के लिए शायद 4 या 5, 6 अलग अलग प्रकार की जोड़ी बनाने की तकनीकें, और फिर हम निष्कर्ष निकालेंगे। तो हमारी पहली जोड़ी वास्तव में नीतिवचन 26, 4 और 5 थी। यह वास्तव में स्पष्ट है, यह एक जोड़ी है। यदि आप अध्याय 15:08 और 9, नीतिवचन 15:08 और 9 पर जाएं, तो इस जोड़ी को वाक्यात्मक रूप से बंधी हुई जोड़ी कहा जाता है। यह वाक्यात्मक रूप से बंधी हुई जोड़ी है। मुझे 2 श्लोक पढ़ने दीजिए। दुष्टों का बलिदान बहुवचन, दुष्टों का बेहतर अनुवाद हो सकता है। दुष्टों का बलिदान यहोवा की दृष्टि में घृणित है, ध्यान दे, मैंने वहां कोई क्रिया नहीं डाली है। इसे शब्दवाचक उपवाक्य कहा जाता है, कोई क्रिया नहीं है। अब अंग्रेजी में, जब हिब्रू में कोई क्रिया नहीं है, तो हम आमतौर पर इस शब्द का उपयोग करेंगे। हम इस शब्द का उपयोग तब करेंगे जब हिब्रू में कोई क्रिया न हो। तो दुष्टों का बलिदान प्रभु के लिए घृणित है, लेकिन है नहीं है, आइए इस बारे में बहस न करें कि क्या है। लेकिन फिर भी हम जो कह रहे हैं वह यह है कि है मौजूद नहीं है, इसे इसलिए डाला गया है क्योंकि हमें अंग्रेजी में इसकी आवश्यकता है, उन्हें हिब्रू में इसकी आवश्यकता नहीं थी, और इसलिए इसे हिब्रू में वर्बलिस्ट क्लॉज कहा जाता है। और हिब्रू में क्रियाहीन उपवाक्य पर बहुत सारे सुंदर अध्ययन हुए हैं, परंतु सीधे लोगों की प्रार्थना बहुवचन से उसे प्रसन्नता होती है, इसलिए दुष्टों का बलिदान यहोवा को घृणित लगता है, परंतु वह सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। अगला पद यहोवा को घृणित काम दुष्टों का मार्ग एकवचन। यहोवा की घृणित वस्तु दुष्टों का मार्ग, फिर वहां कोई क्रिया नहीं है। तो आपको यहां एक और क्रियारहित उपवाक्य मिल गया है, और इसलिए आपको 15.8a और 9a में दो क्रियाहीन उपवाक्य मिले हैं, प्रभु के लिए घृणित दुष्टों का मार्ग एकवचन। पहले में दुष्ट बहुवचन था, तो वहां एक बदलाव आया है, तो हम अंग्रेजी में कहेंगे दुष्टों का मार्ग प्रभु को घृणित लगता है, परंतु जो धर्म पर चलता है वह उसे प्रिय है। लेकिन एक ध्यान दें कि कैसे पहली कविता 8:15 में सभी बहुवचन थे, दुष्ट ईमानदार उनमें से कई हैं, और अब यह एकल हो रहा है। दुष्टों की चाल प्रभु को घृणित लगती है एक वचन, परंतु वह धर्म पर चलने वाले से प्रेम रखता है, और उस आखिरी में एक क्रिया है। तो चलिए इस पर नजर डालते हैं। मैंने हिब्रू भाषा को यहां इसलिए रखा है ताकि आप इसका अनुभव प्राप्त कर सकें। पीला रंग दिया गया है, हिब्रू वैसे पढ़ता है कि दाएं से बाएं क्या होगा, हम बाएं से दाएं पढ़ते हैं। तो आपको हिब्रू पढ़ने के लिए इस तरह वापस आना होगा। प्रभु के लिए घृणित वस्तु पीले रंग में है, तोवत अडोनाई या तोवत अडोनाई दुष्टों का बलिदान, और दुष्ट वे हैं नारंगी में बहुवचन है। तो दुष्ट लोग, शायद दुष्ट लोगों का बलिदान प्रभु के लिए घृणित है, लेकिन यह वास्तव में दुष्टों के बलिदान से शुरू होता है जो अगले बृहदान्त्र के लिए घृणित है, कहता है लेकिन ईमानदार लोगों की प्रार्थना बहुवचन उसकी खुशी है, और आप देखते हैं कि उसका आनंद पीला है, और रेटजोनोल भी पीले रंग में है, और इसलिए आपके पास वो चीजें चल रही हैं। अब आप अगले श्लोक पर आते हैं, आप देखेंगे कि अगली कविता तोवत अडोनाई से शुरू होती है, प्रभु के लिए घृणित और फिर दुष्ट है दुष्टों का मार्ग। दुष्टों का मार्ग वहां एकमात्र है, और फिर उसका अंतिम भाग वह है जो उस धार्मिकता का अनुसरण करता है जिसे वह पसंद करता है। और अब अंततः आपको एक क्रिया मिलती है, और यह ईश्वर के बारे में बात करती है। ध्यान दें कि 8वें श्लोक में पहली पंक्ति का अंत उसकी प्रसन्नता के साथ होता है, उसका अडोनाई या यहोवा को संदर्भित करता है। श्लोक 9 के अंत में ध्यान दें, यह वह प्रेम करता है सो जो धर्म का अनुसरण करता है वह प्रेम रखता है। क्रिया में जो वह है तीसरा पुरुष पुल्लिंग एकवचन क्रिया, वह फिर से यहोवा या अडोनाई या प्रभु को संदर्भित करता है। तो यह प्रभु के लिए घृणित है, और फिर वह उससे प्यार करता है जो धार्मिकता का अनुसरण करता है, और इसलिए अंत में उन दोनों के पास पहले वाले प्रभु की घृणित वस्तु के समान सर्वनाम संदर्भ हैं, और फिर वह उसकी खुशी है या वह प्यार करता है। तो बस इसे मैप करने का प्रयास करें। अब हिब्रू का सख्ती से पालन करते हुए मैंने इसका अनुवाद इस तरह किया है, दुष्टों का बलिदान यह निर्दिष्ट करते हुए कि यह बहुवचन है प्रभु के लिए घृणित, परंतु सीधे लोगों की प्रार्थना फिर से बहुवचन उसे प्रसन्न होती है, और फिर मैंने इन्हें एक तरह से रंग कोडित किया है। दूसरा श्लोक 9 प्रभु के लिए घृणित है, ध्यान दें कि मैंने इसे अंग्रेजी में भी सामने रखा है। प्रभु के लिए घृणित दुष्ट का मार्ग, लेकिन जो धार्मिकता का अनुसरण करता है वह प्यार करता है। यह बहुत रुचिपूर्ण है। यह दुष्टों का मार्ग पवित्र शास्त्र में अन्यत्र 5 बार आता है। मैंने 5 बार सूचीबद्ध किया है कि यह कहां घटित होता है, और हर बार जो कहीं और घटित होता है वह बहुवचन होता है। हर बार जब यह कहीं और होता है दुष्टों का मार्ग, तो यह बहुवचन होता है, रशा के बजाय रशें। यह बहुवचन है। यहां ध्यान दें, यदि यह 15.8 से 15.9 का मिलान करने का प्रयास कर रहा होता तो यह बहुवचन हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। यह अभी भी कहावत के भीतर ही विलक्षण है, क्योंकि दुष्टों का मार्ग एक वचन है, लेकिन फिर धार्मिकता का अनुसरण करने वाला भी एक वचन है। अतः पहले पद में 2 बहुवचन हैं, दूसरे पद में 2 एकवचन हैं। अब मैं यह करना चाहूंगा कि अनुवाद एकवचन और बहुवचन को कैसे संभालते हैं। तो मैंने यहां आपको अपना अनुवाद दिया है, जो बहुवचन दुष्टों को बहुवचन बनाम दुष्टों को बहुवचन एकवचन बनाता है। तो आप देख सकते हैं कि हम वहां हैं। अब यहां ESV क्या करता है? पहले मुझे NIV करने दीजिए। NIV कहता है, प्रभु दुष्टों के बलिदान से घृणा करते हैं। ध्यान दें कि NIV एक क्रिया डालता है। क्या इसमें कोई क्रिया है? नहीं, मुझे लगता है कि संभवतः वहां है शब्द को छोड़ देना ही बेहतर होगा। इस तरह जो कोई भी इस विषय को जानता है उसे पता चल जाएगा कि यह एक क्रियाहीन उपवाक्य है। परंतु यहोवा दुष्टों के बलिदान से घृणा करता है। दुष्ट एकवचन है या बहुवचन? खैर, अंग्रेजी में दुष्ट एकवचन हो सकता है या बहुवचन हो सकता है, तुम्हें पता नहीं, और इसीलिए मैंने दुष्टों को रखा है। और फिर वह इसे स्पष्ट रूप से पहचानता है। ईमानदार लोगों की प्रार्थना, फिर से ईमानदार एकवचन है या बहुवचन? अंग्रेजी में NIV में आप नहीं जानते, क्योंकि यह ईमानदार है, यह एकवचन हो सकता है, यह बहुवचन हो सकता है। जब तक आप फुटबॉल नहीं खेल रहे हो तब तक आप ईमानदार नहीं कहते, आप अच्छा नहीं कहते, लेकिन फिर भी इसलिए ईमानदार व्यक्ति उसे प्रसन्न करता है। फिर अगला श्लोक शुरू होता है, प्रभु को घृणा है। इन दोनों पर ध्यान दें, NIV शुरू होता है, प्रभु घृणा करते हैं, प्रभु घृणा करते हैं, तो ऐसा लगता है कि वे दोनों उसी से शुरुआत करते हैं, लेकिन वास्तव में हिब्रू में वे ऐसा नहीं करते, और इसलिए यह वास्तव में एक तरह का है। NIV वास्तव में इसे वास्तविक हिब्रू की तुलना में कहावत जोड़ी की चीज के थोड़ा करीब बांधता है। इस प्रारंभिक के स्थान से प्रभु घृणा करता है, प्रभु घृणा करता है, और फिर दूसरे श्लोक में, श्लोक 9 NIV में प्रभु घृणा करता है, वहां कोई क्रिया नहीं है, वे क्रिया में घृणा डालते हैं। यहोवा दुष्टों के चाल चलन से घृणा करता है। अब यह एकवचन, एकवचन बहुवचन है। यह NIV नहीं कहता है, जो आपको अस्पष्ट बनाता है, लेकिन वह उनसे प्यार करता है। अब ध्यान दें, NIV वे बनाता है, वे एकवचन है या बहुवचन, इसलिए मैंने इसे लाल रंग में रखा है। वे धार्मिकता का अनुसरण करने वालों को बनाते हैं, वे बहुवचन है। ध्यान दें कि हिब्रू एकवचन है। जो धर्म पर चलता है वह प्रेम रखता है, और इसलिए होता यह है कि NIV श्लोक 8 में बहुवचन बनाम श्लोक 9 में एकवचन के बीच संबंध को भूल जाता है, क्योंकि वह ऐसा कहता है और फिर वह इससे नफरत करता है। इसलिए NIV को वहां थोड़ी समस्या हुई है। दरअसल सभी अनुवादों में समस्याएं होती हैं, यहां तक कि मेरी भी समस्याएं और चीजें हैं। आप नखरेबाज बनना चाहते हैं। मैं यहाँ थोड़ा नकचढ़ा हो रहा हूँ। मुझे इसे स्वीकार करना होगा। ईएसवी यह कहता है, दुष्टों का बलिदान, फिर से एक वचन बहुवचन आप नहीं जानते। यह अंग्रेजी में है, लेकिन ध्यान दें कि यह इज को इज क्रिया के साथ करता है। मुझे वह पसंद है। दुष्टों का बलिदान है, दूसरे शब्दों में यह एक क्रियाहीन उपवाक्य है। हमें अंग्रेजी में इज डालना होगा। तो समझने के लिए, दुष्टों का बलिदान प्रभु के लिए घृणित है। ध्यान दें कि यह प्रभु की घृणित वस्तु को दूसरे स्थान पर रखता है, जो वास्तव में हिब्रू क्रम में बेहतर फिट बैठता है। यह प्रभु की घृणित वस्तु को टिकने नहीं देता। यह एनआईवी की तरह इसे पहले स्थान पर नहीं रखता है। यह इसे दूसरा होने देता है। इसलिए यह हिब्रू के प्राकृतिक प्रवाह का अनुसरण करता है। मुझे भी वह पसंद है। यह शब्दों के क्रम के संदर्भ में हिब्रू को अधिक सटीकता से दर्शाता है। लेकिन ईमानदार लोगों की प्रार्थना, फिर से हम नहीं जानते कि यह एकवचन है या बहुवचन है, फिर से वहां है क्रिया डालता है, जो हमें बताता है कि यह एक क्रियाहीन उपवाक्य है। तो यह वास्तव में बहुत अच्छा है। आपके पास एक क्रियाहीन उपवाक्य और एक क्रियाहीन उपवाक्य और 8a 8b और फिर 9a दुष्टों का तरीका है। फिर दुष्ट, हम नहीं जानते कि यह एक वचन है या बहुवचन। अंग्रेजी में दुष्ट एक वचन हो सकता है या बहुवचन हो सकता है। यह कुछ कुछ हिरण जैसा है। एक बार जब हम यात्रा कर रहे थे तो मेरा एक मित्र था, मुझे लगता है कि वह स्कॉटलैंड में था, और उसने कहा, सभी हिरणों को देखो, सभी हिरणों को देखो, और तुम कहते हो एक मिनट रुको। अंग्रेजी में हम कहते हैं हिरण, एकवचन हिरण बहुवचन है। तो हम भेड़ों भेड़ों को जानते हैं, सभी भेड़ों को देखो, और आप कहते हैं हम वास्तव में भेड़े नहीं पालते, हम भेड़ पालते हैं और हम हिरण पालते हैं। भेड़ एकवचन है। वहां एक भेड़ है और वहां बहुत सारी भेड़े हैं, और इसलिए वे किसी भी दिशा में जाते हैं। तो दुष्टों के साथ, तो दुष्ट का मार्ग एकवचन बहुवचन वास्तव में नहीं कहता है, इसीलिए मैं दुष्ट के मार्ग का अनुवाद करता हूं। और फिर यह स्पष्ट करता है कि यह एकवचन है, और यह ईएसवी इसे बहुत अच्छी तरह से करता है। क्रियाहीन उपवाक्य को उठाता है, यह प्रभु के लिए घृणित है। अब शायद उन्हें तब आदेश को स्वाइप करना चाहिए था और कहना चाहिए कि भगवान का घृणित कार्य इब्रानी से मेल खाने का दुष्टों का तरीका है, एक इब्रानी वहां क्रम में थोड़ी बेहतर है। लेकिन वह प्यार करता है, लेकिन वह उससे प्यार करता है। अब देखो वे क्या करते हैं, परंतु वह उससे प्रेम रखता है जो धर्म पर चलता है। इसलिए वे एकवचन कहते हैं, जो वास्तव में यहां मुद्दा है कि श्लोक 9 एकवचन है, और वे इसे कहने के बजाय उसे वहां से उठाते हैं। और आप कहते हैं, ठीक है, वह यह बहुत लिंग समावेशी नहीं है, और आप उन सभी चीजों से बच सकते हैं। ठीक है, और आप जानते हैं, मुझे इन सब में पढ़ने की कोई परवाह नहीं है। हालांकि यहां जब यह उसे कहा जाता है तो आप जानते हैं यह एक वचन है, और इसलिए यह बहुत अच्छा है, और इसलिए ईएसवी यहां अच्छा काम करता है, और मुझे यह उन्हें देना होगा, और इसलिए सामंजस्य, दोनों बातें यहोवा हैं। यहोवा यहोवा से घृणा करता है, यह यहोवा के लिए घृणित है। और फिर दूसरा श्लोक, इससे प्रभु घृणा करते हैं, यह प्रभु के लिए घृणित है। उन दोनों के पास यहोवा है, इसलिए इन्हें यहोवा की बातें कहा जाता है। और जब आप नीतिवचनों में हो, विशेष रूप से कहावतों में, तो यहोवा की उक्तियों को देखें जो परमेश्वर के नाम का उल्लेख करती हैं। नीतिवचन के अनुभाग, नीतिवचन में इनकी संख्या लगभग 87 है, 15 समीपवर्ती छंदों में हैं। तो आपके पास एक यहोवा कह रहा है, उसके बाद एक और यहोवा कह रहा है, लगभग 15 हैं जो 87 में से निकटवर्ती हैं। दोनों में कैचवर्ड हैं। अब इसमें कई मुहावरे हैं, प्रभु के लिए घृणित, प्रभु के लिए घृणित। इसका उल्लेख दोनों बार किया गया है, तोवत अडोनाई। और पहली कविता कहती है, तोवत अडोनाई, दो शब्द भगवान के लिए घृणित या भगवान घृणा करते हैं। हालांकि आप इसका अनुवाद घृणित के रूप में करना चाहते हैं, और इसलिए आपको भगवान की इस घृणित रचना के साथ ये दोनों मिल गए हैं। दोनों छंदों में कई शब्द हैं, इनमें से दो शब्द हूबहू घटित होते हैं, उन्हें कैचवर्ड कहा जाता है। अब यह वाक्यांश प्रभु के प्रति घृणित है, आइए उस पर गौर करें। नीतिवचन में उनमें से 11 हैं और मैंने उन्हें यहां सूचीबद्ध किया है। इनमें से 11 हैं, तो 11 प्रभु के लिए घृणित कहावते हैं। केवल इस बार वे बैक टू बैक हैं, तो अन्य समयों में से कोई भी प्रभु के लिए घृणित नहीं है। इसके बाद एक और कहावत आती है जो प्रभु के लिए घृणित है। यहाँ नीतिवचन 15:08 को छोड़कर उन्हें कभी भी एक के बाद एक नहीं रखा गया है, और इससे पता चलता है कि यहाँ एक जोड़ी बन रही है। वे सामान्यतः बिखरे हुए होते हैं। उनमें से केवल 11 किस लिए हैं? अध्याय 10-29 वह क्या है? 19 अध्याय या तो, और मैं जो कह रहा हूँ वह 19 अध्याय है। इनमें से 11 प्रभु के घृणित कार्य हैं, और केवल यही, उन्हें एक के बाद एक रखा गया है। बाकी लोग बिखरे हुए हैं और किसी भी मायने में अपने पड़ोसी के करीब नहीं हैं। तो वैसे भी यह बहुत दिलचस्प है। इससे पता चलता है कि यहाँ जानबूझकर जोड़ी बनाई जा रही है। केवल एक और समय है जब प्रभु की घृणित वस्तु का उपयोग दुष्टों के साथ किया जाता है, और वह अध्याय 17:15 में है। और फिर भी यहाँ हम इसे लगातार दो बार दुष्टों के साथ जोड़ते हैं। प्रभु का घृणित कार्य, दुष्टों का मार्ग, और फिर मैं भूल जाता हूँ कि दूसरा क्या था, दुष्टों का मार्ग और दुष्टों का बलिदान। तो पहला है दुष्टों का बलिदान और फिर दूसरा है दुष्टों का मार्ग। वे दोनों ही यहोवा के लिए घृणित हैं, और इसलिए यह वहां एक बहुत दिलचस्प और मजबूत संबंध है। राशा शब्द दुष्ट से जुड़ी हो, और इसलिए केवल यही वह संबंध बना है, और यह दो बार बना है, एक बार श्लोक 15:8 में और एक बार श्लोक 15:9 में, और कहीं नहीं। तो यह बहुत दिलचस्प है। अब वाक्यात्मक दृष्टि से एक साथ बंधे हुए ये दो छंद, वे एक साथ कैसे चलते हैं? दुष्ट का निर्माण दूसरी संज्ञा से हुआ है, तो दुष्टों का बलिदान, दुष्टों का मार्ग, यह पहली कविता में दुष्टों का बलिदान है और दूसरी कविता में दुष्टों का मार्ग है। तो आपको वह मिल गया है जिसे चियास्म कहते हैं। चियास्म एक वाक्यांश है, यह एबीबी एक ही तरह है। आम तौर पर चीजों को एबीसी का आदेश दिया जाता है। एक चियास्म एबीसी सीबीए होगा, तो एक एक्स है। ग्रीक में एक एक्स ची है, आप इसे कैसे उच्चारण करना चाहते हैं, और सामान की यह वास्तव में शी है। ची मूल रूप से ग्रीक में एक्स जैसा दिखता है, तो इसे चियास्म कहा जाता है। एक चियास्म एक एक्स की तरह दिखता है, और इसलिए आप यहां स्क्रीनशॉट पर देख सकते हैं कि ए और बी पहली कहावत के बाद बी और ए दूसरी कहावत है, और यदि आप दो ए को जोड़ते हैं और दो बी को जोड़ते हैं तो आप देखेंगे कि कनेक्शन एक एक सियाची बनाते हैं। इसीलिए इसे चियास्म कहा जाता है क्योंकि ए बी बी ए आप उन्हें जोड़ते हैं और यह ची की तरह दिखता है, ग्रीक ची जो हमारे अक्षर एक्स की तरह दिखता है। इसलिए इसे ग्रीक में चियास्म कहा जाता है, दुष्टों का बलिदान, प्रभु का घृणित कार्य, दुष्टों का मार्ग। तो आपको दुष्टों ए का बलिदान मिला है तो यह भगवान भी के लिए घृणित है। और फिर 9 ए में आपको प्रभु का घृणित कार्य मिला है, बी दुष्टों का मार्ग है, ए तो आपको बी ए मिला है। इसलिए आपको ए बी बी ए मिला है, भगवान का घृणित कार्य जो इसके केंद्र में है, और इसके केंद्र में बी बी है, और दुष्टों का बलिदान और दुष्टों का मार्ग बाहर की ओर ए हैं। और इसलिए यह ग्रीक या हिब्रू में एक सामान्य संरचना है। कुछ लोगों के दिमाग में चियास्मस होता है, तभी जब वे पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं तो वे कहते हैं ओह मुझे चियास्मा होने वाला है। वे सभी जगह पर हैं, इसलिए इसका बहुत ज्यादा फायदा मत उठाइए। लेकिन जहां तक ऑर्डर देने की बात है तो संरचना एबीबीए को देखना दिलचस्प है। इनमें से प्रत्येक नीतिवचन के दूसरे कोलन या दूसरी पंक्ति में ईमानदार व्यक्ति की प्रार्थना उसे प्रसन्न करती है, जो कि प्रभु के घृणित कार्य, दुष्टों के बलिदान का संदर्भ देती है। यह उसी को संदर्भित करता है। और फिर जो धार्मिकता का अनुसरण करता है वह भगवान की ओर इशारा करते हुए तीसरे व्यक्ति एकवचन पुल्लिंग से प्यार करता है, और इसलिए यह काफी दिलचस्प है। दूसरी दोनों पंक्तियां ए कोलन या ए चीज की पहली पंक्ति में भगवान को वापस संदर्भित करती हैं, तो यह बहुत दिलचस्प है। मैं बस इतना कहना शुरू कर रहा हूं कि वे व्याकरण और उस तरह की चीजों से वाक्यात्मक रूप से बंधे हुए हैं। प्रथम दोनों उपवाक्य क्रियारहित हैं, तो आपके पास दो शब्दवाचक उपवाक्य हैं। दोनों पहली पंक्तियां एक वस्तु, बलिदान या तरीका और दुष्टों को साझा करती हैं। तो उन दोनों में मूल रूप से एक संज्ञा वाक्यांश है जिसका अर्थ है दुष्टों का बलिदान, दुष्टों का मार्ग। और इसलिए वे समानांतर, वे दोनों संज्ञा वाक्यांश हैं और वे दोनों दुष्ट के साथ संयुक्त हैं। एक है बलिदान, एक है रास्ता। रास्ता बड़ा विषय है। जैसे ही मैं रास्ता कहता हूं, दुष्टों का रास्ता, यह ज्ञान साहित्य को ट्रिगर करता है जहां आपके पास दो रास्ते हैं, धर्मी का रास्ता और दुष्टों का रास्ता। और इसलिए दोनों में दो इकाई संज्ञा वाक्यांश हैं और दुष्टों का बलिदान प्रभु के लिए घृणित और प्रभु के लिए घृणित दुष्टों का मार्ग। फिर से वहां उस चियास्म संरचना में एक बी और नौ बी दोनों सर्वनाम वापस जाते हैं, सर्वनाम वापस यहोवा को संदर्भित करते हैं। उन दोनों में सर्वनाम संरचनाओं का उपयोग करने के लिए समान वाक्यात्मक व्यवस्था या संदर्भ था। विषय दोनों इस बात को संबोधित करते हैं कि क्या प्रभु को प्रसन्न करता है और क्या प्रभु को अप्रसन्न करता है, और इसलिए यह एक प्रकार का विषय है जो वास्तव में इन चीजों को एक साथ लाता है, लेकिन साथ ही वाक्य रचना भी। दोनों छंदों की सेटिंग वास्तव में काफी विविध हैं। प्रथम की स्थापना दुष्टों का बलिदान है, हे प्रभु यह दुष्टों के बलिदान से घृणित है। पंथ में पुजारियों और उस तरह की सभी चीजों के साथ जो बलिदान किए गए थे, और दुष्टों का तरीका, इसे देखने का एक अधिक बुद्धिमान तरीका है। और इसलिए यह जोड़ा मूल रूप से सांस्कृतिक बातें खींचता है और कहता है कि इससे उसे घृणा होती है कि दुष्ट ये बलिदान करेंगे। इसमें कहा गया है कि जब दुष्ट बलिदान या धार्मिक कार्य करता है तो वह पुजारी के पास जाता है और वह यह अद्भुत बलिदान करके दिखाएगा कि वह कितना धर्मात्मा व्यक्ति है, और यह कहता है परमेश्वर इससे बैर रखता है। यह परमेश्वर का घृणित कार्य है और परमेश्वर इससे घृणा करता है, और इसलिए इन सांस्कृतिक कृत्यों को वास्तव में नकारात्मक तरीके से रखा जाता है। दूसरे शब्दों में दुष्ट बलिदान करता है और यह वहां एक विरोधाभास है। यह भगवान के लिए घृणित है। चरित्र ईश्वर से प्रतिक्रिया प्राप्त करता है। भगवान आपके बलिदान की तुलना में दुष्टों के चरित्र की अधिक परवाह करते हैं, और यदि आप सिर्फ एक बलिदान कर रहे हैं और आप एक दुष्ट व्यक्ति हैं, तो इसमें कोई शक्ति नहीं है, और इसलिए बलिदान प्रार्थना से एक बड़ी दिशा की ओर, वह बलिदान और प्रार्थना से बहुत बड़ी दिशा दुष्टों के मार्ग और धार्मिकता की ओर बढ़ता है। नीतिवचनों में बलिदानों का उल्लेख लगभग 5 बार किया गया है और वे आमतौर पर हमेशा नकारात्मक होते हैं। आमतौर पर हमेशा नकारात्मक। मैंने वहां कुछ संदर्भ सूचीबद्ध किए हैं। नीतिवचन 21:27 भी जोड़े घृणित बलिदान करते हैं। आपको याद रखना होगा, ज्ञान एक तरह से गैर है। इस पर एक बड़ी बहस चल रही है कि पंथ कैसे होता है। जब मैं पंथ कहता हूँ तो मेरा मतलब भगवान की पूजा के बाहरी कृत्यों, बलिदानों, दावतों, प्रार्थनाओं, उन प्रकार की बाहरी चीजों से है जो हम करते हैं। करना, हम सिर झुकाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, वह हमारे पंथ का हिस्सा होगा। आपके द्वारा किया गया कोई भी बाहरी कार्य जो ईश्वर के साथ आपके संबंध को प्रकट करता है, उसे पंथ माना जाएगा। आम तौर पर यह पुजारियों और उनके तत्वावधान में किया गया है। इसलिए जब बलिदानों का उल्लेख किया जाता है तो ज्ञान लगभग हमेशा नकारात्मक होता है। तुम्हें याद है, नीतिवचन की किताब में कोई पुजारी नहीं है, है ना? कोई भी बलिदान नकारात्मक नहीं है। दावतों का तो जिक्र ही नहीं है, पुजारियों का तो उल्लेख ही नहीं है। नीतिवचन की पुस्तक में प्रार्थना का 3 बार उल्लेख किया गया है। इस खंड में 10:29 दो सकारात्मक हैं, 15:08 सकारात्मक है, ईमानदार लोगों की प्रार्थना, फिर प्रार्थना सीधे से जुड़ी है, यह सकारात्मक है। 15:29 में भी प्रार्थना का उल्लेख है, लेकिन प्रार्थना का उल्लेख नकारात्मक तरीके से किया गया है। तो अध्याय 15 में 2 बार, संभवतः अध्याय 15 को नीतिवचन की पुस्तक में प्रार्थना अध्याय कहा जाता है, लेकिन अध्याय 28:9 नीतिवचन में प्रार्थना का नकारात्मक संबंध में उल्लेख किया गया है। तो वैसे भी उसी के साथ काम करें। तो अब हमें अध्याय 15:8-9 मिल गया है। मैंने दिखाया है कि कैसे वे चीजें एक जोड़ी के रूप में एक साथ बंधी हुई हैं। अब आप कैसे जानते हैं कि यह त्रिक या चतुर्भुज नहीं है, या आप द्विघात समीकरण या कुछ और कैसे कहना चाहते हैं? तो आप क्या करते हैं कि आप उन दोनों को लेते हैं, यह अध्याय 15:8 अध्याय 15:9 है, पूर्ववर्ती श्लोक पर जाएं और देखें कि क्या यह लिंक करता है। पूर्ववर्ती पद नीतिवचन अध्याय 15:07 है। यह कहता है कि यह ज्ञान संबंधी शब्दों से भरा हुआ है, लेकिन इसमें कोई ओवरलैप नहीं है। इसलिए नीतिवचन 15:07 कहता है कि बुद्धिमान के होंठ तो ज्ञान फैलाते हैं, परंतु मूर्खों का मन ऐसा नहीं फैलाता। यह अध्याय 15 अगस्त 2009 से बिल्कुल मेल नहीं खाता, जिसे हमने अभी देखा। अध्याय 15:07 मौखिक है। यह शब्दरहित नहीं है, जैसा हमने इन अन्य में देखा। साथ ही सामग्री भी अलग है। तो फिर हम चलते हैं, 9 क्या है, 10 क्या है, श्लोक 10 क्या है, क्या यह अलग है? दूसरे शब्दों में क्या यह जोड़ी अलग हो गई है? क्या श्लोक 8-9 को श्लोक 7 और श्लोक 10 से अलग करके अपना युग्म बनाया गया है? और उत्तर श्लोक 10 है। इसमें यहोवा का कोई संदर्भ नहीं है। यह एक सामान्य ज्ञान अनुशासन और उसका स्वागत है। जो कोई भी मार्ग छोड़ देता है, कठोर ज्ञान उसकी प्रतीक्षा करता है। जो कोई ताड़ना से बैर रखता है वह मर जाएगा। यह नहीं कहता कि प्रभु इससे या उससे घृणा करता है, और यह बलिदान या ईमानदार लोगों की प्रार्थनाओं या कुछ भी नहीं है। तो श्लोक 10 जुड़ता नहीं है। तो दूसरे शब्दों में यह वास्तव में एक जोड़ी है। अध्याय 15 श्लोक 8 से 9 युग्म है। यह श्लोक 7 से नहीं जुड़ता, श्लोक 10 से नहीं जुड़ता। यह एक जोड़ी है और इसलिए इसे हम कहते हैं कहावत जोड़ी। इसलिए जोर उन चीजों पर है जिनसे प्रभु घृणा करते हैं, दुष्टों का बलिदान, दुष्टों का मार्ग, दुष्टों का बलिदान, दुष्टों का मार्ग। पहला अधिक सांस्कृतिक है, दूसरी जोड़ी अधिक ज्ञान उन्मुख है, दुष्टों का मार्ग। सीधे और खोजी की प्रार्थना जो धर्म का अनुसरण करता है उसे प्रसन्न करता है। सो ये वे बातें हैं जो उसे प्रसन्न करती हैं, अर्थात सीधे लोगों की प्रार्थना। तो प्रार्थना में एक चरित्र घटक होता है। जो व्यक्ति ईमानदार होता है ईश्वर उसकी प्रार्थना सुनता है। परंतु यदि तेरा मन बुरा है, हे मनुष्य तेरा मन दुष्ट है, तो परमेश्वर कहता है, अरे यह घृणित है। यहां दिलचस्प बात यह है कि प्रार्थना व्यक्ति के चरित्र पर निर्भर करती है। और वैसे भी धर्मी लोगों के कार्य परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। सांस्कृतिक कृत्यों पर चरित्र। सांस्कृतिक कृत्यों पर चरित्र एक चीज जो मैंने खोजी है और शायद मैं भविष्य में इस पर एक व्याख्यान दूंगा, वह यह है कि बहुत से लोगों ने कहा है कि नीतिवचन 10 से 29 तक की वे सभी कहावतें कार्य परिणाम हैं जिनका कोच और अन्य ने वर्णन किया है, कार्य परिणाम। और यह प्रतिशोध का कानून है, या आप इसे जो भी कहना चाहें, कार्य पर परिणाम करें। वे कहते हैं कि यह एक मौलिक विषय है जो लगभग सभी कहावतों कार्य परिणाम को रेखांकित करता है। मैं वास्तव में इससे असहमत था और दिखाया, मुझे नहीं लगता कि यह कार्य परिणाम है। मुझे लगता है कि यह चरित्र परिणाम है और यह एक सूक्ष्म बदलाव है, लेकिन बहुत सूक्ष्म नहीं। कार्य परिणाम खा एक व्यक्ति ऐसा कार्य कर सकता है जिसका परिणाम होता है, लेकिन नीतिवचन किसी के चरित्र, बुद्धिमान, धर्मी, दुष्ट, इस प्रकार की चीजों, हिंसक के बारे में अधिक चिंतित है। अधिकांश नीतिवचनों में चरित्र परिणाम पर ही ध्यान केंद्रित किया गया है, और इसलिए मैं कार्य परिणाम से चरित्र परिणाम की ओर बदलाव के लिए कहूंगा। और मुझे लगता है कि नीतिवचन की किताब को पढ़ते समय आपको यह देखना बेहतर होगा कि यह एक विशिष्ट कार्य के बजाय परिणाम को कैसे जोड़ता है। ईश्वर की संलग्नता, मूल्यांकन और ईश्वर की व्यक्तिगत प्रतिक्रिया धार्मिक सांस्कृतिक व्यवहारों से अधिक चरित्र पर आधारित होती है, वे गतिविधियां जो चरित्र को प्रतिबिंबित करती हैं। वह पाखंड के आर पार देखता है। वह बुद्धिमान है, भगवान बुद्धिमान है, और वह एक दुष्ट व्यक्ति के पाखंड को देखता है जो बलिदानों के साथ आता है, यह दिखावा करता है कि वह धर्मी है और वह दुष्ट है, लेकिन वह वास्तव में अपने दिल में दुष्ट है। भगवान उसके माध्यम से देखता है। वह बुद्धिमान है, वह बोधगम्य है, उसके पास विवेक है, उसे समझ है, और ये ज्ञान की बातें हैं और हमें इनका आदेश दिया गया है। श्लोक 8 में सांस्कृतिक कृत्यों से लेकर श्लोक 9 में ज्ञान के तरीकों को अपनाने तक का विस्तार, श्लोक 8 और 9 के बीच एक दिलचस्प प्रगति। पहला व्यक्ति बलिदानों के मामले में अधिक सांस्कृतिक है, दूसरा दुष्ट का मार्ग अधिक ज्ञान आधारित कहलाता है। तो यह एक है नीतिवचन अध्याय 15:08-09 वाक्यात्मक रूप से एक साथ बंधे हुए हैं और किस चीज से प्रभु घृणा करते हैं या उससे घृणा करते हैं और क्या नहीं है और किस चीज से वह प्रसन्न होते हैं। तो क्या भगवान को प्रसन्न करता है और क्या भगवान को खुश नहीं करता है? यदि आप प्रभु को प्रसन्न करना चाहते हैं तो ये काफी महत्वपूर्ण चीजें हैं, काफी महत्वपूर्ण चीजें हैं। अब अमीरों की दौलत, बस यही ले लूं। यह नीतिवचन 10:15-16 है। अब हम उस पर गौर करेंगे। यह हमारी दूसरी जोड़ी है। दरअसल यह हमारा तीसरा है। हमने नीतिवचन 26:4-5 किया है। हमने अध्याय 15:8-9 पूरा कर लिया है और अब हम नीतिवचन 10:15-16 को देखने जा रहे हैं। यह नीतिवचन 10:15-16 के बाद एक और जोड़ी होगी। धनवान का धन उसका दृढ़ नगर है और दरिद्रता कंगालों का विनाश है। धर्मी की कमाई जीवन है परंतु दुष्ट की कमाई दंड है। अब यह एक नॉन कैचवर्ड जोड़ी है, एक नॉन कैचवर्ड जोड़ी है और इसलिए हम इसे देखना चाहते हैं और मैंने यहाँ हिब्रू भाषा रखी है ताकि आप इसे देख सकें, लेकिन फिर इसके अंतर्गत अंग्रेजी भी NIV और ESV दोनों अनुवादों में। लेकिन फिर भी और मैंने पीले जैसे शब्दों पर प्रकाश डाला है, पीले शब्द फिर से पढ़े जाते हैं। आप हिब्रू को दाईं से बाईं ओर पढ़ रहे हैं, लेकिन अमीरों की संपत्ति उनका दृढ़ शहर है, तो किरियत उजो वह है जो वहाँ पीले रंग में है। उनका दृढ़ शहर वह है जो हिब्रू में पीले रंग में है। अमीरों का धन उनका दृढ़ नगर है, ध्यान दें वहाँ कोई क्रिया नहीं है, इसीलिए मैंने वहाँ है शब्द डाला है। यहाँ तक कि NIV भी ऐसा करता है, ESV भी वही काम करता है, वहाँ IS वर्ब डालता है। गरीबों की बर्बादी, वहाँ गरीब शब्द गरीब होना चाहिए, उनकी गरीबी है। और इसलिए वैसे भी आप देखते हैं कि ESV में वास्तव में उनका का थोड़ा सा हिस्सा सामने आता है जो अच्छा है। गरीबों की गरीबी उनकी बर्बादी है। इसे रखने का यह एक अच्छा तरीका है क्योंकि तब आप जानते हैं कि यह बहुवचन है और फिर यह अंत में आने वाले सर्वनाम के साथ भी चला जाता है। एक अमीर आदमी का धन उसका मजबूत शहर है। उजो शब्द का अनुवाद उसका मजबूत शहर के रूप में किया जा सकता है, लेकिन जब आप शहरों के बारे में बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप बोस्टन मजबूत तरह की चीजों के बारे में बात करते हैं, न्यूयॉर्क कमजोर या जो भी हो। मुझे माफ करें, लेकिन वैसे भी बोस्टन, हम बोस्टन में रहते हैं, बोस्टस्ट्रॉन एक तरह की चीज है। लेकिन आम तौर पर जब हम मजबूत शहर कहते हैं तो हम किलेबंदी की बात करते हैं। उन दिनों में यह वह था जो दृढ़ था और इसलिए मुझे वास्तव में NIV अनुवाद उनका दृढ़ शहर पसंद आया, शायद उसका मजबूत शहर से भी बेहतर, क्योंकि जब हम बोस्टन मजबूत में इसका उपयोग करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि यह जरूरी है कि यह कैसे काम करता है। मुझे लगता है कि किलेबंद शहर संभवतः अधिक सटीक है। अब दूसरा श्लोक, 16 कहता है, धर्मी की मजदूरी जीवन है, फिर यह एक क्रियाहीन उपवाक्य है। शब्द है वहां है और इसलिए धर्मी की मजदूरी जीवन है। NIV को यह मिल गया। आप देख सकते हैं कि पीला कहां मेल खाता है, लेकिन दुष्टों की कमाई सजा है। अब यमक सजा शब्द पीले रंग में है, लेकिन सजा सफेद रंग में है, तो मैंने इसे उड़ा दिया। लेकिन वास्तव में जब आप ESV को देखते हैं, धर्मी का वेतन जीवन की ओर ले जाता है, तो वहां ESV लीड शब्द डालता है और मुझे लगता है कि यह नेतृत्व शब्द वास्तव में आपको भटकाता है क्योंकि वहां कोई क्रिया नहीं है। तो यह होना चाहिए कि धर्मी की मजदूरी जीवन है, जीवन है, जीवन है। लचैन, आप लोग लहैन को जानते हैं? आप किसी यहूदी पार्टी या किसी अन्य पार्टी में जाते हैं और वे टोस्ट खा रहे होते हैं। आप कहते हैं एलहाइम। लहैन का अर्थ है जीवन के लिए, और इसलिए मैं कहता हूं यह बिल्कुल हिब्रू है, यहां सफेद वहां जीवन है। लेकिन ध्यान दें कि यह कहता है कि धर्मी की मजदूरी जीवन की ओर ले जाती है, वहां कोई क्रिया नहीं है। तो यह मजदूरी होनी चाहिए, धर्मी की मजदूरी जीवन और लाभ के लिए है। और फिर एएसवी को दुष्टों का लाभ मिलता है, और फिर आपको मूलतः क्रिया की आपूर्ति करनी होगी। दुष्टों का लाभ पाप की ओर ले जाता है। तो यह पाप शब्द का अनुवाद करता है, और उस शब्द का अर्थ पाप हो सकता है, लेकिन इस संदर्भ में इसका अर्थ संभवतः दंड है। इसलिए मुझे लगता है कि एनआईवी ने इसे वास्तव में पाप की तुलना में इसके अर्थ के संदर्भ में अधिक सही पाया है। और इसलिए सावधान रहें, आप जानते हैं मैं अनुवाद कह रहा हूं, वे अंग्रेजी अनुवाद हैं, और दो भाषाएं हिब्रू हमेशा अंग्रेजी से मेल नहीं खाती हैं। और इसलिए अंग्रेजी अनुवादक द्वारा इसका अनुवाद करने के तरीके में कुछ भिन्नताएं होंगी। कभी कभी वे इसे सही कर लेंगे, कभी कभी वे इसे गलत समझ लेंगे। तो आपको मेरी बात सुननी होगी, क्योंकि मैं इसे हमेशा सही समझता हूं। मजा नहीं, ठीक है, मैं और भी गड़बड़ करता हूं। यदि आप यह देखना चाहते हैं कि मैंने क्या किया, तो एनएलटी को देखें, क्योंकि मैंने नीतिवचन के लिए एनएलटी पर कुछ अन्य वास्तव में बहुत अच्छे विद्वानों रे वान लीवेन, रिचर्ड शुल्ट्स और ट्रेम्पर लॉन्गमैन के साथ काम किया था, और उनके साथ काम करना सचमुच सम्मान की बात थी। लेकिन एनएलटी में भी मैं अपने अनुवाद की आलोचना कर सकता हूं। तो आपको सावधान रहना होगा, अनुवाद आपको देना होगा। मुझे कैसे कहना चाहिए, थोड़ा सा उन लोगों को थोड़ा सा स्थान दे जो अनुवाद कर रहे हैं। और इसलिए मैं यहां गड़बड़ी कर रहा हूं, लेकिन ठीक है, मुझे वहां से निकल जाने दीजिए। अब सामंजस्य 10:15 को 16 के साथ एक जोड़ी में कैसे जोड़ा जाता है? इसमें एक भी शब्द दोहराया नहीं गया है, भले ही उच्च आवृत्ति वाले शब्द हैं। नीतिवचन में धर्मी और दुष्ट शब्द सभी जगह उपयोग किए जाते हैं। और आप कहेंगे, ठीक है, आप जानते हैं वे दो शब्द निश्चित रूप से उन दो छंदों में उन्हें एक साथ बांधने के लिए उपयोग किए जाने चाहिए। नहीं नहीं, भले ही वे दुष्टों के लिए धर्मी, तजेदेका और राशा शब्दों का उपयोग करते हैं, लेकिन उन्हें छंदों में दोहराया नहीं गया है। आर्थिक शर्तें, उन चीजों में ढेर सारी आर्थिक शर्तें हैं। धन अमीरी, गरीबी, गरीबी, मजदूरी, आमदनी, ये सभी हैं। यह उनमें से प्रत्येक के लिए अलग अलग शब्दों का उपयोग करता है। अतः कोई भी शब्द दोहराया नहीं गया है। तो आप यह नहीं कह सकते कि एक ऐसा शब्द है जो इन दोनों को एक साथ बांधता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो इन दोनों को एक साथ बांधता हो। हालांकि वाक्यात्मक रूप से यह बहुत दिलचस्प है कि 15 ए और बी और 16 ए और बी सभी क्रियारहित उपवाक्य हैं। तो आपके पास मूलतः 4 पंक्तियां हैं, प्रति छंद 2 पंक्तियां, इसीलिए वे इसे द्विपनिवेश कहते हैं। यदि आप द्विविराम हैं तो इसका मतलब 2 पंक्तियां हैं, द्विविराम 2 पंक्तियां, तो आपको 2 द्विकॉलन मिलते हैं। तो यह एक पंक्ति में 4 पंक्तियां हैं। वैसे जब आप अपने पुराने नियम में होते हैं या आप अपने तनाख में होते हैं, तो आप किसी कथा से कविता कैसे सुनाते हैं? आख्यानों को पैराग्राफों में रखा गया है, लेकिन कविता पंक्तियों, एकल पंक्तियों में बनी है। कविता पंक्तियों से चलती है, पैराग्राफ से नहीं। तो आपके पास यहाँ ये चार पंक्तियां हैं जिन्हें सेट किया गया है। वे सभी क्रियाहीन उपवाक्य हैं। वे सभी एक पंक्ति में क्रिया रहित उपवाक्य हैं, अर्थात उनमें से चार को एक पंक्ति में रखना बहुत दुर्लभ है। अथ चारों के विषय एक संज्ञा प्लस स्वामी हैं। इन चारों में संज्ञा प्लस स्वामी और स्वामी, अमीर और गरीब। तो आपके पास इन नैतिक स्वामियों से जुड़े धन संबंधी शब्द हैं। श्लोक 15 में वे स्वामी आर्थिक स्थिति, अमीर और गरीब हैं। श्लोक 16 में स्थिति अधिक नैतिक है और इसलिए यह उसी तरह चलता है। तो छंद 15a और 16a में आर्थिक प्रभाव का सकारात्मक मूल्यांकन, इसके बाद छंद 15b और 16b में नकारात्मक प्रभाव। तो बी नकारात्मक हैं और दोनों छंदों में ए आर्थिक संकेतकों का वर्णन कर रहे हैं। अब इन आर्थिक चीजों पर अध्याय 10 श्लोक 15 क्या वे इसके आगे श्लोक 14 और इसके बाद श्लोक 16 से जुड़े हैं? नहीं, श्लोक 13 और 14 वास्तव में वाणी के बारे में हैं और वे दोनों मौखिक उपवाक्य हैं। और वे मौखिक उपवाक्य हैं, इसलिए वे क्रियाहीन उपवाक्य नहीं हैं, इसलिए वे बिल्कुल मेल नहीं खाते हैं। और फिर निम्नलिखित को एक कैचवर्ड द्वारा जोड़ा जाता है, लेकिन फिर यह तंग नहीं है। तो ये दो श्लोक हमें जो बता रहे हैं वह अमीर होने का लाभ है और फिर यह इसे नैतिक गुणों के साथ जोड़ता है। तो गरीब होने की तुलना में अमीर होने के निश्चित रूप से फायदे हैं। नीतिवचन, तुम पागल नहीं हो, अमीर लोगों को कुछ लाभ होते हैं लेकिन गरीब लोग कुछ स्थितियों में बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन फिर यह क्या करता है, यह अध्याय 10:15 में उस आर्थिक कहावत को लेता है और इसे एक नैतिक कथन से जोड़ता है और इसलिए यह अलग हो गया है और दोनों अच्छी तरह से जुड़ गए हैं। धन, हाँ, धन को गरीबी से अधिक महत्व दिया जाना चाहिए, लेकिन नैतिक गुणवत्ता धन और स्थिति से भी अधिक महत्वपूर्ण है। तो वे दोनों बंधे हुए हैं। अब एक दिलचस्प अगली जोड़ी जिस पर हम नजर डालेंगे उसमें कुछ बहुत दिलचस्प और वाकई दिलचस्प विशेषताएं हैं। अध्याय 13 श्लोक 21-22। अध्याय नीतिवचन, अध्याय 13 श्लोक 21 और 22। अध्याय 13:21 में यह कहता है, 13:21 कहता है, विपत्ति पापियों का पीछा करती है परंतु धर्मियों को भलाई का प्रतिफल मिलता है। इसलिए विपत्ति पापियों का पीछा करती है परंतु धर्मियों को भलाई का प्रतिफल मिलता है। आयत 22 में अगली आयत कहती है, भला मनुष्य अपने नाती पोतों के लिए अपना भाग छोड़ जाता है परंतु पापी का धन धर्मी के लिए रखा जाता है। और आप ESV और NIV को देखें, काफी हद तक एक ही चीज है। अब ध्यान दें और मैं स्लाइड को ऊपर रखूंगा ताकि आप इसे देख सकें। मेरा अनुवाद, मैंने हिब्रू के क्रम का पालन करने का प्रयास किया और मूल रूप से मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि ये दो श्लोक 13:21 और 22 स्थितिगत रूप से एक साथ बंधे हैं, जहां शब्द रखे गए हैं, जहां शब्द वाक्य में रखे गए हैं। और वैसे भी तो मेरे अनुवाद को देखो और मैं हिब्रू के लिए बहुत शाब्दिक होने की कोशिश कर रहा हूं। वैसे ऐसा नहीं है, हिब्रू का शाब्दिक होना हमेशा अच्छा नहीं होता है। कभी कभी आपको चीजों को समझने में थोड़ा अधिक गतिशील होने की आवश्यकता होती है क्योंकि हिब्रू और अंग्रेजी के बीच चीजें अलग अलग होती हैं। लेकिन वैसे भी इसलिए मैं यहाँ अपनी ही चीज की आलोचना करने के लिए अत्यधिक शाब्दिक हो रहा हूँ। जहाँ तक अनुवाद की बात है तो यह एक तरह की आपदा है, लेकिन मैं एक बात स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ। और शब्दों के रंगों पर ध्यान दें। तो नारंगी वाला, पापियों का, विपत्तियां पीछा करती हैं, विपत्ति पीछा करती है, लेकिन धर्मी लोगों को अच्छी चीजों से पुरस्कृत किया जाता है। ध्यान दें कि पापियों, इसकी शुरुआत पापियों से होती है और इसका अंत अच्छी चीजों पर होता है। दरअसल अच्छी बातें सिर्फ बताई जाती हैं, अच्छी बातें। और फिर अगली कविता शुरू होती है, भला मनुष्य अपने पोते पोतियों और अपने बच्चों के बच्चों के लिए विरासत छोड़ जाता है, परंतु पापी का धन धर्मियों के लिए रखा रहता है। तो जिस तरह से मैंने इसका अनुवाद किया है उस पर ध्यान दें, और यह बिल्कुल हिब्रू शब्दों का अनुसरण करता है कि 13:21 पापियों शब्द से शुरू होता है और यह पापी शब्द के साथ समाप्त होता है। ये बिल्कुल वही शब्द हैं। तो पापी और पापी, यह पापी से शुरू होता है और यह पापी पर समाप्त होता है। बूम, इसे समावेशन कहा जाता है। यह एक लिफाफे की तरह है। यह उसी तरह शुरू और समाप्त होता है। यह एक लिफाफे की तरह है। वे इसे समावेशन या समावेशन कहते हैं। यह उसी तरह शुरू और समाप्त होता है। लेकिन फिर गौर करें कि इसके बीच में क्या होता है। धर्मी लोगों को अच्छी चीजें, समृद्धि से पुरस्कृत किया जाता है। धर्मियों को समृद्धि, अच्छी चीजों से पुरस्कृत किया जाता है। और इसमें तो शब्द का प्रयोग होता है। तोव मियोर का हिब्रू में अर्थ है बहुत अच्छा। यदि आप सड़क पर हैं और कोई आपको कुछ प्रदान करता है तो आप कहते हैं तोव मियोर, इसका मतलब है बहुत अच्छा। तोव अच्छा शब्द है। ठीक है इमैनुएल, तो ठीक है। आइए इन सब बातों पर ध्यान न दें। वैसे भी तोव का मतलब अच्छा है। तो यहां अच्छी चीजें हैं, अच्छा। और यहां अच्छी चीजें किसी व्यक्ति की अच्छाई के बारे में बात नहीं कर रही हैं। यह उन अच्छी चीजों के बारे में बात कर रहा है जो उसे मिलती हैं। इसलिए धर्मी लोगों को अच्छे चरित्र से नहीं बल्कि अच्छी चीजों या समृद्धि से पुरस्कृत किया जाता है। तो इसका अनुवाद समृद्धि या अच्छी चीजें हैं। लेकिन फिर अगला श्लोक कैसे शुरू होता है? अगली कविता तोव से शुरू होती है। फिर तोव अपने पोते पोतियों के लिए एक विरासत छोड़ जाता है, एक अच्छा इंसान। तो आपको जो मिला वह श्लोक 21 के अंत और श्लोक 22 के आरंभ में एक ही शब्द है, लेकिन उनका अनुवाद दो अलग अलग तरीकों से किया गया है। जो 21 को समाप्त होता है वह अच्छी चीजों, आपको दी गई समृद्धि के अर्थ में तोव है, और 22 में तोव की शुरुआत तोव शब्द से होती है जिसका अर्थ है एक अच्छा आदमी। अब बात चरित्र की हो रही है। तो यह बहुत दिलचस्प है। इसकी शुरुआत पापी से होती है और इसका अंत पापी पर होता है, और बीच में आपको ये अच्छी चीजें, तोव और अच्छा आदमी मिला है। ये भी बिल्कुल वही शब्द हैं। तो शुरुआत और अंत में स्थितिगत रूप से वही शब्द। काव्य में प्रारंभिक स्थिति महत्वपूर्ण है। आरंभ और अंतिम शब्द आमतौर पर महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए जब आप कविता से निपट रहे हों तो आरंभिक शब्द और अंतिम शब्द के लिए अपनी आंखें हमेशा खुली रखें, और बीच में तब आपको पता चलेगा कि पहली कविता अच्छी चीजों के साथ समाप्त होती है और दूसरी कविता अच्छे व्यक्ति के साथ शुरू होती है। वे बिल्कुल वही शब्द हैं, लेकिन अनुवाद के संदर्भ के कारण उनका अनुवाद दो अलग अलग तरीकों से किया गया है और होना भी चाहिए। उन्हें होना भी चाहिए भले ही वे बिल्कुल एक जैसे शब्द हों। आप कहते हैं ठीक है, उन्हीं शब्दों का उसी तरह अनुवाद किया जाना चाहिए। मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे बताओ ट्रंक क्या है? अब आप अंग्रेजों की तरह बोलते हैं, है ना? तना, ट्रंक क्या है? खैर ट्रंक, क्या आप जानते हैं ट्रंक क्या है? आप नहीं जानते कि ट्रंक क्या है? आप कहते हैं ठीक है, विभिन्न प्रकार के होते हैं, आपका क्या मतलब है? मैं बात कर रहा हूँ, मैं वहाँ अपने बेटे की कार को देख रहा हूँ। वह इसे बेचने की कोशिश कर रहा है। और अगर मैं कहूँ कार डिक्की, तो आप एक बात सोचेंगे, है ना? लेकिन क्या होगा यदि मैं अफ्रीका में हूँ और मैं कहूँ हाथी की सूंड? क्या हाथी की सूंड का संबंध कार की सूंड से है? ओह, और फिर मैं कैमरे से बाहर देख रहा हूँ, कैमरे से परे, और वहाँ कुछ पेड़ हैं। यदि मैंने कहा कि पेड़ का तना, तो क्या पेड़ का तना कार के तने से संबंधित है? हाथी की सूंड से संबंधित है? यह वही शब्द है। आप उसी तरह अनुवाद करने जा रहे हैं। जब आप ट्रंक शब्द लाते हैं, जब आप पेड़ का ट्रंक कहते हैं, तो क्या आप वही छवि सामने लाते हैं जो आप हाथी की सूंड या कार के ट्रंक के साथ करते हैं? या क्या होगा यदि आप यात्रा कर रहे हैं और आपके पास एक सूटकेस और एक ट्रंक है और आप एक ट्रंक के साथ यात्रा कर रहे हैं? मेरी पत्नी के पास देवदार का तना है और वह मेरे सारे स्वेटर उसमें डाल देती है। मैं उन्हें वहां जाम कर देता हूँ। मैं उन्हें मोड़ता नहीं। लेकिन फिर भी आपके पास देवदार का तना है। और इसलिए देवदार का तना, अगर मैं एक सूटकेस के विपरीत देवदार का तना कहूँ, तो देवदार का तना पेड़ के तने से अलग है, कार के तने से अलग है और हाथी के तने से अलग है। यह एक ही शब्द ट्रंक है, लेकिन इसके चार अलग अलग अर्थ हैं। और यदि आप उनका उसी तरह अनुवाद करते हैं, तो आप चीजें गड़बड़ा देंगे। नीतिवचन 13:21-22 में भी यही बात है। जब यह अच्छा कहता है, तो पहला अच्छा अच्छी चीजें समृद्धि कहता है। और जब दूसरे शब्द में अच्छा का उपयोग किया जाता है, तो इसका उपयोग एक अच्छे व्यक्ति के लिए किया जाता है। इसलिए इस पर जोर देने से सावधान रहें। उन्हें शाब्दिक होना होगा। तो आपको हमेशा शब्द का अनुवाद उसी तरह करना होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते। आप अंग्रेजी में ऐसा नहीं कर सकते। आप हिब्रू में ऐसा नहीं कर सकते। तो ठीक है। तो यहाँ मुझे यह अगली स्लाइड मिल गई है। आप शुरुआत देख सकते हैं जहाँ पापी पीले रंग से शुरू होते हैं और अच्छे अर्थ समृद्धि या अच्छी चीजें नारंगी रंग में और फिर अच्छे नारंगी रंग में और फिर अंत में आप फिर से पापी हो गए। और इसलिए अंत में पापी और शुरुआत में पापी, पापी बहुवचन है, अंत में शुरुआत एकवचन है, लेकिन अच्छे में अच्छा एक ही सटीक शब्द है, तो यह स्थिति है। पहला शब्द अंतिम शब्द लिफाफा समावेशन पापी और फिर अच्छा और अच्छा उस पर पापियों को परेशानी होती है, लेकिन धर्मी को अच्छी चीजों या समृद्धि के साथ अच्छे काम के लिए पुरस्कृत किया जाता है। भला मनुष्य अपने पोते पोतियों के लिए अपना भाग छोड़ जाता है, परंतु पापी का धन धर्मी के लिए रख छोड़ जाता है। तो यह घेरने वाली शुरुआत और अंत और मध्य में दोनों अच्छे की ओर जा रहे हैं। इन दोनों कहावतों को एक साथ एक स्थिति में एक कहावत जोड़ी में बांधता है। इसे देखने और फिर से ध्यान देने का एक और तरीका है। हमने पाया है कि यह चियास्म सामने आता है। मुझ पर चियास्म उन्माद नहीं है, लेकिन वैसे भी यह पापियों के यहाँ होता है। इसकी शुरुआत पापियों से होती है, जैसे कि बी अच्छे हैं, जैसे बी दो नारंगी वाले हैं और फिर पापी पीले हैं। तो यह एबीबी ऐसे शुरू होता है और समाप्त होता है। इसलिए हमारे पास उनके रूप में एक ची है, फिर से वह एक्स। जब आप एबीबी ए को जोड़ते हैं और आप ए को जोड़ते हैं और आप बी को जोड़ते हैं, तो आपको एक एक्स मिलता है। या आप मैं कहता था कि एक सियाची प्राप्त करें, लेकिन यह वास्तव में महत्वपूर्ण है। यह सचमुच महत्वपूर्ण है। यही कुंजी है। वैसे भी क्षमा करें, मैं केवल ग्रीक और चीजों में कुंजी और ची शब्द का प्रयोग कर रहा था। तो फिर भी आइए इन चीजों के साथ थोड़ा मजा करें। तो 21 ए और बी के विचार वस्तु क्रिया विषय दोनों हैं। क्रम वस्तु क्रिया और फिर विषय है। की शुरुआत तो शब्द से होती है जिसका अर्थ है एक अच्छा आदमी। अब बात चरित्र की हो रही है। फिर दूसरी पंक्ति वस्तु क्रिया करता है। तो यह ओवीएस वस्तु क्रिया विषय है। ओवीएस वस्तु क्रिया विषय। वे 21 ए और बी नीतिवचन 13:21 के लिए आपकी दो पंक्तियों से पूरी तरह मेल खाते हैं। अब 21 बी में विषय क्रिया वस्तु अच्छा एक विरासत छोड़े, लेकिन देखिए आपको शब्दों का क्रम बदलना पड़ा। यह ओवीएस वस्तु क्रिया विषय वस्तु क्रिया विषय था, लेकिन विषय अच्छा है। और यह समाप्त होता है, जैसा कि आप देखते हैं कि यह 21 बी पर समाप्त होता है, लेकिन फिर जब आप 22 ए शुरू करते हैं तो इसे अच्छे से शुरू करना होता है। और इसलिए आपको ओवीएस ऑब्जेक्ट क्रिया विषय होने के बजाय विषय क्रिया ऑब्जेक्ट पर जाना होगा। आपको इसे इधर उधर बदलना होगा। अंग्रेजी बहुत हद तक उसने गेंद को मारा पर केंद्रित है, ठीक है, या उसने गेंद को मारा विषय क्रिया वस्तु। उसने मारा एक क्रिया वस्तु गेंद। और इसलिए हम एक प्रकार की एसवीओ चीज करते हैं। और यहां आप एसवीओ देखते हैं। हिब्रू अधिक लचीलेपन की अनुमति देता है। तो वे ओवीएस ओवीएस करते हैं, लेकिन फिर आप चाहते हैं कि अच्छा शब्द अच्छे से जुड़े। तो फिर आपको इसे बदलने के लिए विषय क्रिया वस्तु को करना होगा। और फिर अंत में आपको पापी का धन प्राप्त करना होगा, लेकिन आपको निष्क्रिय बनाना होगा। तो फिर निष्क्रिय इसे धर्मी के लिए जमा करना पापी का धन है। और इसलिए आप समाप्त करते हैं, इसलिए अंतिम वीपी हो जाता है, जहां वी क्रिया है, पी पूर्वसर्गीय वाक्यांश है और वस्तु अंत में आती है। और इसलिए आप समझ गए हैं, ध्यान दें कि यह ओवीएस है तो वह वस्तु जो पापियों से शुरू होती है उस वस्तु से मेल खाती है जो अंत में पापी का धन है। और इसलिए मैं जो कहना चाह रहा हूं वह यह है कि जब आप इसमें शामिल होना शुरू करते हैं तो यह सुंदर होता है। यह बहुत सुंदर है। रंग चाल चीज का व्याकरण और जो शब्द उपयोग किए जाते हैं वे सभी हैं, मुझे कैसे कहना चाहिए, यह काव्यात्मक अभिव्यक्ति के शब्दों के साथ एक अद्भुत पेंटिंग है कि व्याकरण भी इतनी खूबसूरती से दर्शाता है कि वे कैसे जुड़े हुए हैं। तो नीतिवचन अध्याय 13:21-22 इस तरह जुड़ा हुआ है। अब इसका व्याख्या शास्त्र अंतिम शब्द में तो शब्द की पुनरावृत्ति जिसका अर्थ समृद्धि है, जहां उसे समृद्धि या अच्छी चीजों से पुरस्कृत किया जाता है और फिर अच्छा फिर अगले श्लोक में अच्छे व्यक्ति में बदल जाता है। और इसलिए आपने देखा होगा कि वे एक ही शब्द हैं। केवल अंग्रेजी अनुवाद न लें और कहें अच्छा यह समृद्धि है और न कहें नहीं नहीं नहीं, यह समृद्धि शब्द वही है जो भलाई के लिए है। क्या आप उन कनेक्शनों को देख सकते हैं? जब आप उस संबंध को देखते हैं तो आप कहते हैं अरे यार यह तो सुंदर है। यह सचमुच बहुत अच्छा है कि वे इस कहावत के अंत को अगली कहावत से कैसे जोड़ते हैं। इसलिए यह कहावत है अच्छे चरित्र वाली जोड़ी। धर्मी का प्रतिफल पापी का धन है। अब 22 बी विषय को अंतिम स्थान पर रखता है और समावेशन की सुविधा देता है, और हमने इस पर पहले ही गौर कर लिया है। यह सुविधा प्रथम और अंतिम स्थिति को जोड़ती है। क्या यह अलग है? क्या 13, 21 और 22 अलग अलग हैं? तो यह केवल एक युग्म है, त्रय नहीं। ठीक है, यदि आप पिछली आयत पर जाएं, तो यह कहती है, जो बुद्धिमान के साथ चलता है, वह बुद्धिमान हो जाता है, परंतु मूर्खों का साथी हानि उठाता है। और इसलिए जाहिर है कि यह उस आर्थिक आधार वाली चीज के साथ फिट नहीं बैठता है जिसके साथ हम वहां निपट रहे हैं। और यदि आप इसके बाद के श्लोक 21 और 22 पर जाते हैं, यदि आप श्लोक 23 पर जाते हैं, गरीबों की प्रतिभूमि में बहुत भोजन होता है, परंतु वह अन्याय से नष्ट हो जाती है। और इसलिए यह अर्थशास्त्र के बारे में है। यह वास्तव में फिट नहीं बैठता है और यह बिल्कुल भी जुड़ा हुआ नहीं है। अन्य क्योंकि यह उन दो छंदों 21 और 22 से घिरा हुआ है। यह एक तरह से ऐसा है जैसे कि यह एक इकाई है और 23 उसमें फिट नहीं बैठता है। तो हमने अब उनमें से तीन को देखा और हम यहाँ अपने अंतिम को देखना चाहते हैं। और यह एक विषयगत है। कभी कभी जोड़ियों को थीम के आधार पर जोड़ा जाता है, अधिकतर नहीं। थीम नहीं है, हमने सिंटैक्टिक लिंकिंग देखी है। हमने कैच शब्द, अनेक कैच शब्द देखे हैं। हमने यह समावेशन देखा है जहां वे एक ही तरह और चीजों से शुरू और समाप्त होते हैं। और अब वे विषयगत हैं। हम अंग्रेजी में हैं, हम अपने विषय को पसंद करते हैं, विषयों को जारी रखते हैं, आप जानते हैं। नीतिवचन आमतौर पर उस तरह से नहीं होते हैं, लेकिन कभी कभी वे एक विषय वस्तु बनाते हैं। और इसलिए 15 अध्याय 15:01 और 2 में आपको मिला है, कोमल उत्तर क्रोध को दूर कर देता है। कोमल उत्तर से क्रोध शांत हो जाता है, परंतु कठोर शब्द से क्रोध भड़क उठता है। बहुत समझदारी वाली बात। कोमल उत्तर क्रोध को दूर कर देता है। मेरी पत्नी इसमें विशेषज्ञ है और उसके शब्द सौम्य हैं और यह स्थितियों को शांत कर देता है। मैं अक्सर कठोर शब्द बोलता हूं और इससे गुस्सा भड़क उठता है। और वैसे भी 15:01 कोमल उत्तर क्रोध को शांत करता है, परंतु कठोर शब्दों से क्रोध भड़कता है। अगला श्लोक कौन सा है? बुद्धिमान जीव ज्ञान की सराहना करती है, फिर यह भाषण और भाषण के प्रभाव के बारे में है, लेकिन मूर्खों के मुंह से मूर्खता ही निकलती है। मूर्खों के मुंह से मूर्खता की बातें निकलती हैं। और इसलिए यह तब भाषण के बारे में बात करता है और एक भाषण बुद्धिमानों की जीभ और फिर यह मूर्खों के मुंह के बारे में बात करता है। तो वे दोनों बुद्धिमानों की जीभ और मूर्खों के मुंह के समान हैं। तो यह एक प्रकार का संज्ञा वाक्यांश है जो बुद्धिमान और मूर्ख से मेल खाता है। कोई साझा शब्द शब्द नहीं है। हालांकि विषय ही सब कुछ है, ये दोनों ही भाषण के बारे में बहुत स्पष्ट हैं। इसमें कोई साझा शब्द नहीं है और यह बुद्धिमानों का उपयोग करता है, यह मूर्खों का उपयोग करता है। फिर ये नीतिवचन में प्रभावशाली शब्द हैं। उन्हें उनके बीच दोहराया नहीं जाता है। मुंह और जीभ फिर से सभी नीतिवचनों में उपयोग किए जाते हैं। मुंह और जीभ दोहराए नहीं जाते। शब्द और क्रोध दोहराया नहीं। इसलिए एक भी शब्द की पुनरावृत्ति नहीं है। इन दोनों छंदों के बीच कोई उपवाक्य नहीं है। फिर भी विषय भाषण पर बहुत स्पष्ट रूप से है, दोनों भाषण की शक्ति को संबोधित करते हैं। यही उनका विषय है। और इसलिए यहां मैं आपको केवल हिब्रू और वहां की अंग्रेजी देता हूं। कोमल उत्तर क्रोध को दूर कर देता है। सौम्य उत्तर, आप देख सकते हैं कि इसकी शुरुआत पीले रंग से होती है, लेकिन कठोर शब्द क्रोध भड़काता है। और इसलिए आप वहां समानताएं देख सकते हैं। और फिर नीचे बुद्धिमान जीभ लैशोन, बुद्धिमान जीभ ज्ञान की सराहना करती है, परंतु मूर्ख मुंह पे केसिन का मूर्ख मुंह मूर्खता का कारण बनता है। लेकिन मूर्खता और मूर्खता पर भी ध्यान दें, वे दो अलग अलग शब्द हैं, और इसलिए यह बहुत अधिक है। इन्हें एक साथ जोड़ने के लिए यहाँ कोई कैचवर्ड नहीं है, लेकिन वे दोनों भाषण के बारे में बहुत स्पष्ट रूप से हैं। एक दिलचस्प समरूपता है। आइसोमोर्फिज्म एक प्रकार के अमूर्त बीजगणित से आता है, जहां आइसो का मतलब समान बराबर होता है। कुछ आईएसओ का मतलब बराबर है। रूपवाद वही रूप, और इसलिए वाक्यात्मक रूप श्लोक एक और दो में बहुत समान है। तो यह एसवीओ विषय क्रिया वस्तु है। पहली पंक्ति में अगली पंक्ति कर्ता क्रिया वस्तु है। दूसरा छंद एसवीओ विषय क्रिया वस्तु है। और चौथी पंक्ति आप जानते हैं, आपको प्रत्येक श्लोक के लिए दो पंक्तियां मिली हैं और चौथी पंक्ति भी एसवीओ है। तो विषय एक संज्ञा वाक्यांश है जो एक संज्ञा और एक गुण से बना है। यहां क्रिया बहुत दिलचस्प है। क्रियाएं सभी हिफिल अपूर्ण हैं। अब हिफिल अपूर्णताएं उतनी बार नहीं होती, वे काफी संख्या में होते हैं, लेकिन कभी भी इस तरह एक पंक्ति में चार नहीं होते। सभी हिफिल अपूर्ण, ऐसे चार का एक पंक्ति में होना आश्चर्यजनक है। फिर यह दिखाता है कि वे हिब्रू क्रिया के हिफिल रूप द्वारा व्याकरणिक रूप से एक साथ कैसे बंधे हैं। और फिर वस्तु एक संज्ञा है। तो इस विषय एक संज्ञा वाक्यांश है जो एक संज्ञा और एक गुण से बना है। आपको क्रिया इस हिफिल अपूर्ण हिब्रू रूप में मिल गई है, और तब आपको पता चल जाएगा कि वस्तु सिर्फ एक संज्ञा है। और फिर इन चारों पंक्तियों में ऐसा ही होता है, और मैंने इसे एक तरह से यहां पंक्तिबद्ध कर दिया है। 100 में उत्तर विषय दूर हो जाता है क्या? क्रोध एक शब्द क्रोध, एक कठिन शब्द दो शब्दों पर ध्यान दें, उसके बाद क्रिया हलचल मचाती है, कौन सी चीज? एक गुस्सा, बुद्धिमान जीभ दो शब्दों पर ध्यान दें, विषय बुद्धिमान जीभ एक संज्ञा वाक्यांश में एक साथ रखें, सराहना क्रिया ज्ञान एकल संज्ञा। अगला मूर्खतापूर्ण मुह दो शब्द गूंज क्रिया गूंज क्या? एकल संज्ञा मूर्खता। और इसलिए आप देख सकते हैं कि उन सभी में यह विषय क्रिया वस्तु क्रम है, लेकिन फिर उनके पास दो शब्दों के साथ यह संज्ञा वाक्यांश भी है, जिसके बाद एक संज्ञा के साथ एक क्रिया है। दो शब्द हिफिल क्रिया, उसके बाद एक संज्ञा, और वे सभी इस तरह से हैं, जिससे पता चलता है कि वे एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए हैं। विषयवस्तु भावनात्मक प्रतिक्रिया के लिए अग्रणी एक भाषण अधिनियम, एक चरित्र भाषण, एक ज्ञान परिणाम देने वाला भी है। और इसलिए क्या अब वे अलग हो गए हैं? 15:01 और 2 को 14:35 से अलग किया गया है। और आप कहते हैं, आप एक अध्याय विभाजन पर वापस क्यों जाते हैं? आपको एहसास है कि अध्याय प्रभाग जोड़े गए थे, मुझे नहीं पता 1200 के दशक में या उसके आसपास। और अध्याय विभाजन अक्सर, यदि आप किसी अध्याय विभाजन को देखना चाहते हैं जो वास्तव में बंद है, तो यशाया 53 पर जाएं और यशाया 53 से पहले के 4 या 5 छंद पढ़े। और जाहिर है, जिस व्यक्ति ने यशाया 53 को विभाजित किया, वे इसे चूक गए। उन्हें उससे पहले छंदों को शामिल करना चाहिए था। अत अध्याय विभाजन प्रेरित नहीं है। इन्हें लगभग 1200 में जोड़ा गया था, इसलिए इन्हें बहुत बाद में जोड़ा गया। कभी कभी वे इसे सही तरीके से मारते हैं, कभी कभी वे इसे गलत तरीके से मारते हैं। इसलिए जब आप किसी अध्याय के प्रभाग में हो, तो आपको हमेशा यह जांचना होगा कि पहले क्या आ रहा है, इसकी थोड़ी जांच करें, क्योंकि हो सकता है कि वह व्यक्ति इसे भूल गया हो और उन छंदों को अगले अध्याय और इस तरह की चीजों के साथ जोड़ा जाना चाहिए। इसलिए यदि आप 14:35 पर वापस जाते हैं तो यह राजा के साथ नौकर के रिश्ते के बारे में बात करता है। वह वहां भाषण के बारे में बात नहीं कर रहा है, यह उनके रिश्ते के बारे में बात हो रही है। नीतिवचन 15:3 यहोवा का कथन है, फिर भी भाषण उन्मुख नहीं, यह अधिक यहोवा है। तो यह यहोवा का कथन है। तो फिर 15:02 के आधार पर एक साथ जुड़े हुए हैं और यह एसवीओ 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 और फिर ये दो संज्ञाएं हिफिल में एक क्रिया एक एकल संज्ञा इसे एक तरह से जोड़ते हैं। अब कुछ अन्य युग्मन तकनीकें क्या हैं? तो हमने अब 5:5 जोड़ियों पर ध्यान दिया है। नीतिवचन 26:4-5 मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर न देना, मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर देना। यह शायद सबसे प्रसिद्ध जोड़ी है, लेकिन हमने कुछ अन्य जोड़ी पर भी गौर किया है। और अब मैं बस इस बारे में बात करना चाहता हूं कि जोड़ी बनाने की तकनीकें क्या हैं। हमने जो देखा है उसके अलावा उन्होंने किन तकनीकों का उपयोग किया है। कभी कभी नीतिवचनों में बहुत कम आवृत्ति वाले शब्द होते हैं। अब यदि दो कहावतों में दोनों शब्द हैं, धर्मी और दुष्ट, और आप जानते हैं यह एक सदका और राशा है, और आप कहते हैं ठीक है उन दोनों कहावतों में उनके शब्द हैं धर्मी और दुष्ट। मैं इस बारे में ऊपर नीचे नहीं जा रहा हूं। बुद्धिमान और मूर्ख उन शब्दों का इतनी बार उपयोग किया जाता है, बुद्धिमान और मूर्ख उनका इतनी बार उपयोग किया जाता है। यदि दोनों कहावतों में वे शब्द हों तो मैं ऊपर नीचे नहीं कूदूंगा, क्योंकि वे उच्च आवृत्ति वाले शब्द हैं जो वास्तव में लिंक नहीं करते हैं। तो संभावना यह है कि उच्च आवृत्ति शब्दों के साथ उन्हें बस एक साथ डाला जा सकता था, एक साथ फेंका जा सकता था, और वे बस एक साथ हो गए और वहां कुछ खास नहीं था, क्योंकि यह सिर्फ ड्रा का भाग्य था। यह कम आवृत्ति वाले शब्दों के साथ सच नहीं है। और नीतिवचन अध्याय 26:20-21 में हमारे पास लकड़ी एटजिम और आग ईश शब्द आग ईश है। यहां यह कोई सामूहिक संयोग नहीं है, यह सिर्फ ड्रा का सौभाग्य नहीं है। वे शब्द नीतिवचन में कहीं और नहीं, केवल इन दो छंदों अध्याय 26:20-21 में पाए जाते हैं। ये शब्द कहीं और नहीं मिलते और ये दो कहावतों में एक के बाद एक आते हैं। वह कितना दुर्लभ है, केवल ड्रा की किस्मत, ऐसा मत सोचो। तो आपको इससे सावधान रहना होगा। फिर ये कम आवृत्ति वाले शब्द इन जोड़ियों को इंगित करते हैं और उन्हें सीधे आपके चेहरे पर जमा देते हैं। यह ड्रा का सौभाग्य नहीं हो सकता। वे दो शब्द लकड़ी और आग इन दो छंदों के अलावा कहीं और नहीं पाए जाते हैं। तो यह स्पष्ट है कि उन्हें बैक टू बैक रखा गया था, अन्यथा ऐसा होने की संभावना शून्य के समान है। लकड़ी के अभाव में आग बुझ जाती है। जहां कोई कानाफूसी करने वाला नहीं होता वहां झगड़ा बंद हो जाता है। जैसे गर्म अंगारों में कोयला और आग में लकड़ी होती है, वैसे ही झगड़ा भड़काने वाला झगड़ालू मनुष्य होता है। तो लकड़ी और आग उन दोनों छंदों में लकड़ी और आग वास्तव में 20:21 दोनों में और साथ ही पहली पंक्तियों में भी। वे शब्द लकड़ी और आग नीतिवचन की पुस्तक में और कहीं नहीं पाए जाते हैं। तो यह स्पष्ट रूप से दो कहावतों के बीच इन दो कम आवृत्ति वाले कैचवर्ड से जुड़ा हुआ एक जोड़ा है। अब बहुशब्द कैचवर्ड हैं। मान लीजिए जब आपके पास कई शब्द हों और उन्हें दोहराया जाए, तो हमने प्रभु की घृणित चीज देखी। हमने वहां अपने पहले उदाहरण में इसे दो बार देखा। आइए बस इन्हें देखें। नीतिवचन 14:26-27 प्रभु के भय में, प्रभु के भय में। ठीक है, आप कहते हैं कि प्रभु का भय सर्वव्यापी है। नहीं, यह वास्तव में सच नहीं है। और इसलिए प्रभु के भय से व्यक्ति को दृढ़ विश्वास होता है और उसके बच्चों को आश्रय मिलेगा। प्रभु का भय श्लोक 27, 14:27 प्रभु का भय जीवन का आधार है जिससे व्यक्ति मृत्यु के जाल से दूर रह सकता है। तो यहाँ प्रभु का भय और प्रभु का भय। फिर प्रभु ने कितनी बार यहोवा नीतिवचन को एक के बाद एक रखा है? यह वाक्यांश पूरे 10-29 में 15 बार आता है। तो यह बहुत अधिक नहीं है, लगभग 15 बार, आप जानते हैं, इतनी अधिक बार नहीं है। और यहाँ हमें प्रभु का भय मिला है। ये वाकई बहुत अनोखा है। नीतिवचन 10-29 केवल 9 बार अर्थात 568 छंद हैं। इसका उपयोग केवल 9 बार किया जाता है, प्रभु का भय 9 बार। और यहाँ हमने उनमें से 2 को बैक टू बैक रखा है, लेकिन यहाँ केवल 1 कहावत जोड़ी में बैक टू बैक रखा गया है। यह सिर्फ नहीं है, ओह आप जानते हैं, द्रा का सौभाग्य आपको 568 छंदों में उनमें से 9 मिल गए हैं। अरे हाँ, 9 मौके। आप बस उन्हें संभावनाओं को एक साथ फेंक दें। वे इस बात की संभावना और आंकड़ों का पता लगाते हैं। उनका इस तरह एक के बाद एक आना बहुत दुर्लभ है। और यह कहा जाए तो यह सिर्फ द्रा का सौभाग्य था, मुझे ऐसा नहीं लगता। लेकिन 2 वहां नहीं, यहां कुछ अन्य कैचवर्ड बाइंडिंग शब्द एक साथ दिए गए हैं। और इसलिए हम 15, 8, 9 में घृणित शब्द का उपयोग करते हैं। तभी हमने 25, 4 और 5 में अलग अलग देखा, विश्वास मजबूत 25, 11, 12 में सोना, खोज आत्मसात, लकड़ी और फल, उस तरह की चीज। अब एकाधिक कैचवर्ड, हमें 10:15 और 16 में धन मजदूरी आय, 14:20 और 21 में अनुग्रह और प्रेमपूर्ण दयालुता और प्यार और दयालुता, गर्व और अभिमान मिला है। और इसलिए जब कैचवर्ड की एक श्रृंखला होती है तो हमारे पास एकाधिक कैचवर्ड होते हैं। एक पंक्ति में कई कैचवर्ड से मेल खाते हैं और वे मेल खाते हैं। और यह फिर से कठिन है जब आप कुछ शब्दों को एक साथ रखना शुरू करते हैं और फिर उन्हें एक के साथ मिलाते हैं। आप जानते हैं, यह ड्रा का भाग्य नहीं है। इसलिए अब कभी कभी वे अलंकारिक उपकरणों का उपयोग करते हैं। अलंकारिक उपकरण अल है, जिसका अर्थ निषेध के साथ नहीं है। मत करो जैसे, ऐसा मत करो। और फिर एक स्पष्टीकरण कुंजी के रूप में, कुंजी और एक स्पष्टीकरण। तो मत करो अल अल, ऐसा मत करो क्योंकि, और फिर यह बताता है कि आपको वह चीज क्यों नहीं करनी चाहिए। तो नीतिवचन में ध्यान दें, यह दिलचस्प है। कई बार ऋषि बताते हैं कि आपको कुछ क्यों नहीं करना चाहिए। वह बस यह नहीं कहता, तू हत्या नहीं करेगा। वह कहता है कि तुम्हें हत्या नहीं करनी चाहिए और फिर वह समझाता है। और इसलिए यह एक अच्छी बुद्धिमत्ता है। आप इसकी उम्मीद करेंगे। बुद्धि अधिक शैक्षणिक है। यह अधिक विक्षिप्त है। यह अधिक सिखाने वाली बात है। और इसलिए कारण दिए गए हैं। और इसलिए हमारे पास अलंकारिक उपकरण हैं। और मैं अल निषेध मत करो और फिर की क्योंकि और फिर या के लिए क्योंकि की कई चीजों को एक स्पष्टीकरण के रूप में सूचीबद्ध करता हूँ। इसलिए हमारे पास नीतिवचन में है। उदाहरण के लिए नीतिवचन अध्याय 24:1-2, ईर्ष्या मत करो, ईर्ष्या मत करो। ठीक है, तो यह तुम्हारा अल है, बुरे लोगों से ईर्ष्या मत करो। ठीक है, यही उनके साथ रहने की मनाही है। और न ही इच्छा, दुष्ट मनुष्यों से ईर्ष्या न करो और न उनके साथ रहने की इच्छा करो, कीट के लिए या क्योंकि उनके हृदय हिंसा की योजना बनाते हैं। दूसरे शब्दों में, इन लोगों के साथ न घूमें। वे आप पर प्रभाव डालने वाले हैं, क्योंकि उनके हृदय उपद्रव की कल्पना करते हैं और उनके मुंह से उपद्रव की बातें निकलती हैं। और इसलिए इन लोगों के साथ न घूमें। ठीक है, तो श्लोक दो में कि आप पीले प्रकार को हाईलाइट करते हुए देख सकते हैं, ऐसा मत करो, दुष्टों या दुष्टों से ईर्ष्या मत करो, समान मत बनो, क्योंकि या के लिए, और फिर यह समझाता है। और इसलिए ये दो कहावतें फिर एक साथ बंधी हुई हैं, इसलिए मत करो, इस कारण से मत करो। ठीक है, और इसलिए यह एक अलंकारिक उपकरण के रूप में होता है और वे स्पष्ट जोड़े हैं। दूसरा, यह एक दिलचस्प बात है। और कभी कभी मैं वापस आऊंगा और साहित्यिक शैलियों और सूक्ष्म शैलियों के बारे में बात करूंगा। वे ज्ञान, साहित्य या यहां तक कि नीतिवचन की बड़ी शैली नहीं है, लेकिन इसके तहत आपको नीतिवचन से बेहतर और नीतिवचन से बेहतर जैसी चीजें मिलती हैं। नीतिवचन अध्याय 10 से 29 में ऐसी 18 बेहतर नीतिवचन हैं। उनमें से 18 हैं, लेकिन अध्याय 15:16-17 में यह बहुत दिलचस्प है। उनमें से दो को एक के बाद एक रखा गया है, स्पष्ट रूप से जोड़ा गया है। और इसलिए यह अध्याय 15:16 में कहता है, प्रभु का भय मानने से थोड़ा सा, बड़े संकट से, बड़े खजाने और उसके साथ कष्ट से, प्रभु का भय मानने से थोड़ा बेहतर है। अगला श्लोक, जहां प्रेम हो वहां जड़ी बूटी का भोजन, मोटे बैल और उसके साथ बैर करने से उत्तम है। मैं सोचता हूं और मैं आपको बताता हूं, मुझे लगता है कि हमने उस 17 का अनुवाद किया है, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ सूप का कटोरा लेना जिसे आप पसंद करते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ स्टेक खाने से बेहतर है जिससे आप नफरत करते हैं। और मुझे लगता है कि ट्रेम्पर लॉन्गमैन और अन्य, जिन अन्य लोगों के साथ मैंने काम किया, वे वास्तव में मेरी तुलना में कहीं अधिक काव्यात्मक थे। और इसलिए सूप का कटोरा, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ सूप का कटोरा लेना बेहतर है जिसे आप प्यार करते हैं, बजाय किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसे आप नफरत करते हैं। आपको स्टेक मिलता है और आप वहां तुकबंदी और इस तरह की चीजों से नफरत करते हैं। मैंने बस यही सोचा था कि अनुवाद शानदार था। यह वास्तव में इस विचार को मैंने जो किया है उससे बेहतर ढंग से प्रस्तुत करता है। और इसलिए लॉन्गमैन और वान लियुवेन और रिचर्ड शुल्ट्स को बधाई मिली। लेकिन वैसे भी ये दो कहावतें मुसीबत के साथ बड़े खजाने की तुलना में प्रभु के भय के साथ थोड़ा सा रखना बेहतर है। जहां प्रेम हो वहां जड़ी बूटियों का भोजन करना, मोटे बैल के साथ बैर करने से उत्तम है। और इसलिए आपके पास दो बेहतर कहावतें हैं। फिर केवल 18 हैं। अब आपके पास उनमें से दो एक पंक्ति में हैं, तो केवल 16 बचे हैं और बाकी सब जगह जगह बिखरे हुए हैं। उनकी जोड़ी इस तरह कभी नहीं बनाई जाती, तो इससे पता चलता है कि वहां जोड़ी से भी बेहतर है। दो उपमाएं। अब यह दिलचस्प है और अंग्रेजी में अनुवाद, मैं NIV के तरीके से सहमत हूं, हर कोई मूल रूप से उसी तरह से करता है। जब तूफान गुजरता है, तो यह श्लोक 10:25 है और मैंने एक अध्याय खो दिया है। यह बिल्कुल वैसा ही है, मुझे इसे देखना होगा। लेकिन फिर भी आयत 25 में कहा गया है, जब तूफान गुजर जाता है तो दुष्ट नहीं रहता, परंतु धर्मी हमेशा के लिए स्थापित हो जाता है, 10:25। ध्यान दें कि जब यह शुरू होता है तो यह इस तरह के पिछड़े सी से शुरू होता है। क्या आप उस छोटी सी पिछड़ी सी चीज को देखते हैं? यह हिब्रू में एक कफ है और यह एक पिछड़ा हुआ है, एक तरह से पिछड़े सी और चीजों की तरह दिखता है। उस शब्द का अर्थ कब हो सकता है या इसका अर्थ पसंद कुछ जैसा हो सकता है। जैसे तुम्हें पता है मेरा क्या मतलब है या इस कदर। आप विद्यार्थियों को इस तरह की बातें करते हुए सुनते हैं, जैसे मैं यह कर रहा था और जैसा मैं था, और आप जैसे शब्द का उपयोग करते हैं तो इसका अत्यधिक उपयोग हो जाता है। लेकिन कई बार लाइक का प्रयोग उपमा के लिए किया जाता है। वह ऐसा है, वह वैसा है, वह पानी की नदियों के किनारे लगाए गए पेड़ की तरह है। ठीक है, तो यह ऐसा है जैसे एक उपमा की तरह है, और लेकिन इसका अनुवाद भी किया जा सकता है, और इसलिए यहाँ वे इसका अनुवाद करते हैं। इसका अनुवाद तब करते हैं जब तूफान गुजरता है, दुष्ट नहीं रहता। ठीक है, लेकिन ध्यान दें कि इसकी शुरुआत इस सी पिछड़े सी कफ से होती है, लेकिन फिर श्लोक 16 इस तरह से शुरू होता है, जैसे दांतों के लिए सिरका और आंखों के लिए धुआं। तो आलसी वह है जो उन्हें भेजता है। तो यहां आपको वे दोनों आरंभ मिल गए हैं। याद रखें कि मैंने आपको उन शुरुआती स्थितियों के बारे में कैसे बताया था, वे दोनों सी और सी से शुरू होती हैं। अब वैसे यह दुर्लभ है। आपके पास आमतौर पर सी और सी जैसा या कब नहीं होता है। मैं जिन दो कहावतों के बारे में जानता हूं उनमें से किन्हीं दो कहावतों में आपके पास ऐसा नहीं है। मैं इसे और अधिक जांचना चाहता हूं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि यह बहुत बहुत दुर्लभ है और बेम बेम कफ कफ होता है। दोनों की शुरुआत उसी से होती है और फिर एक जोड़ी का संकेत। इसलिए वे उन दो कहावतों को एक साथ बांधने के लिए इस कफ प्रकार की चीज के साथ इस उपमा का उपयोग करते हैं। वाक्यात्मक सामंजस्य लिंकिंग कणों का उपयोग करके निर्भरता। अध्याय 24, 17 और 18, जब तेरा शत्रु गिरे तब आनंदित न होना, और जब वह ठोकर खाए तब तेरा मन आनंदित होना। ऐसा न हो, ऐसा न हो, ऐसा न करना, ऐसा न हो कि प्रभु यह देखकर अप्रसन्न हो और उसका मुंह मोड़ ले, उससे क्रोध दूर हो जाता है। तो दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसा न करें, ऐसा न हो, ऐसा मत करो। याद रखें कि हम ऐसा कैसे नहीं करते, क्योंकि ऐसा होता है, क्योंकि ऐसा होता है। यह दोनों को जोड़ने का एक तरीका है। लेकिन यहां ऐसा न हो शब्द का उपयोग करके लिंक करने का एक और तरीका है। ऐसा मत करो, कहीं ऐसा न हो कि यही परिणाम हो। तो फिर से कणों का उपयोग करते हुए इन वाक्यात्मक कणों को, ऐसा न हो कि वे पिछले से वापस जुड़ जाएं और वे स्पष्ट रूप से फिर एक जोड़ी के रूप में चले जाएं। वे इस तरह जुड़े हुए हैं। ऐसा मत करो, कहीं ऐसा न हो। और फिर कभी कभी एक कहावत जोड़ी होती है जहां दूसरा सर्वनाम प्रत्यय का उपयोग करके पहली जोड़ी को संदर्भित करता है, और इसलिए मैंने उनमें से कुछ को वहां सूचीबद्ध किया है। तो यह सर्वनाम का उपयोग यह बताने के लिए करता है कि वह या वह या जो कुछ भी पिछली कविता में वह या वह का संदर्भ देता है, और इसलिए वे इस प्रकार की चीजों से जुड़े हुए हैं। यहां एक दिलचस्प बात है। यह औसत दर्जे का वाव बहुत दिलचस्प है। ये वाकई दुर्लभ है। शुरुआती स्थितियों के बारे में कैसे बताया था, वे दोनों सी और सी से शुरू होती हैं। अब वैसे यह दुर्लभ है। आपके पास यह 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 लेकिन यह 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 और यह जैसी कहावत होगी। लेकिन और परंतु यह वाव है, और वाव का अनुवाद वास्तव में और या परंतु किया जा सकता है, और इसलिए लेकिन कभी कभी और यह वास्तव में दुर्लभ है। इस पंक्ति के बीच में एक वाव और या लेकिन है जो वास्तव में दुर्लभ है। आमतौर पर यह दूसरी पंक्ति में आता है जहां यह कहा जाता है, लेकिन आप जानते हैं क्यों बेटा पिता के लिए खुशी लाता है, लेकिन एक मूर्ख बेटा अपनी माँ के लिए दुहक होता है। मुझे यकीन नहीं है कि वहाँ कोई वाव है। वैसे भी अध्याय 27 श्लोक 3a यह कहता है कि पत्थर भारी है और पहली पंक्ति में पत्थर भारी है और वजनदार रेत है। वाव पहली पंक्ति के मध्य में है। 27:4a पहली पंक्ति कहती है कि क्रोध क्रूर है और पहली पंक्ति में क्रोध भारी है। और इसलिए मूल रूप से आपको सावधान रहना होगा क्योंकि अनुवाद में कई बार वे और को हटा देते हैं क्योंकि इसकी वास्तव में आवश्यकता नहीं होती है। और इसलिए अनुवाद जब ESV का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया तो उन्होंने और को हटा दिया। लेकिन वह और मध्य एक पंक्ति के बीच में वास्तव में दुर्लभ है। आप जानते हैं एक पंक्ति में यह और यह, एक पंक्ति में यह और यह दुर्लभ है और उन दोनों को बैक टू बैक रखा जाता है। तो यह एक जोड़ी है। नीतिवचन अध्याय 25 और 26 10:25 और 26 एक मध्य या मध्य में और कथन के साथ संज्ञा निर्माण ठीक है। अन्य युग्मन तकनीकें आपके पास थीम है। हमने थीम के बारे में बात की। हमने 25:1 और 2 के बारे में बात की। उत्तर दें, कठोर तरीके से उत्तर न दें, लेकिन सौम्य उत्तर क्रोध को दूर कर देता है। और इसलिए विषयगत सामंजस्य मैंने यहाँ कुछ अन्य छंद सूचीबद्ध किए हैं। अध्याय 11:05 और 6, अध्याय 16:12 और 13 और अध्याय 10:02 और 3 और हमें यहाँ उदाहरण मिले हैं। अध्याय 11:05 और 6 निर्दोष लोग धर्म से अपना मार्ग सीधा रखते हैं परंतु दुष्ट अपनी दुष्टता से गिर पड़ता है। जो धर्म धर्म पर ध्यान देता है वही धर्म सीधे लोगों का उद्धार करता है परंतु विश्वासघाती अपनी अभिलाषा से बंधुवाई में चले जाते हैं। और इसलिए वे दो नीति वचन विषय मूल रूप से धर्मी है और वह कैसे लाभान्वित होता है और कैसे छुटकारा पाता है। दुष्टों का अंत संकट में पड़ता है। चरित्र परिणाम नेक चरित्र सकारात्मक परिणाम दुष्ट चरित्र बुरा परिणाम। और इसलिए वे दोनों विषयगत रूप से जुड़े हुए हैं। तो ठीक है, मुझे इसे एक साथ लाने दें और इसे खत्म करने दें। मैं यहाँ जिस चीज के विरुद्ध बहस कर रहा हूँ वह यह है कि नीतिवचन अध्याय 10:29 को बिना सोचे समझे बेतरतीब ढंग से बिना सोचे समझे बस एक साथ फेंक दिया गया था। और संग्राहक नीतिवचन 25:1 हिजकिया के अधीन सोलोमोनिक व्याख्यान के संपादक और इसे वहाँ अध्याय 25:1 में स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध किया गया है कि उन्होंने सभी नीतिवचनों को एक बड़े कटोरे में डाल दिया। जैसे वे क्या करते हैं, उन चीजों को बुलाओ, भाग्य कुकीज, और आप एक को बाहर निकालते हैं और आप चले जाते हैं, ओह वह वाला, और फिर आप उसे रख देते हैं, आप दूसरा चुन लेते हैं, आप उसके ऊपर चले जाते हैं। यह एक तरह से यादृच्छिक है। आप उन्हें इस बड़े कटोरे से चुन रहे हैं और बस उन्हें यादृच्छिक रूप से बाहर निकालें। और मैं जो कहना चाह रहा हूं वह है नहीं नहीं नहीं। संपादकों ने बहुत सोच समझकर काम किया। उन्हें बहुत परिष्कृत तरीकों से इन जोड़ियों में एक साथ बांधा और 62 जोड़े हैं। तो यह सिर्फ यादृच्छिक नहीं है। 568 में से 124 छंदों में 62 बार यह युग्म आता है, अर्थात 21% में ये युग्म हैं जिनका हमने अभी उल्लेख किया है। अब हमने 5 जोड़ियों के बारे में विस्तार से बताया। 26:4 और 5 मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर न दें, मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर दें। फिर हमने 15:08 और 9 किया। हमने 10:16 और 17 किया। हमने 13:21 और 22 किया और हमने कुछ विस्तार से 15:01 और 2 किया। कठोर उत्तर न दें, कोमल उत्तर क्रोध को शांत कर देता है। इसके बाद हमने प्रयोग की जाने वाली विभिन्न तकनीकों की खोज की, एकल शब्द जो वास्तव में दुर्लभ थे, एकाधिक शब्द कैचवर्ड, कैचवर्ड जो बांधते हैं। हमने वाक्य विन्यास की दृष्टि से शुरुआत और अंत और फिर आरंभ, एक पंक्ति में दो शब्द और इस तरह की चीजें देखी। इस चर्चा के बाद निकले निष्कर्ष ने संपादक की पोल खोल दी। हम जो कर रहे हैं वह वापस जा रहा है और वापस जा रहा है। यह हमें यह देखने की अनुमति दे रहा है कि संपादक ने नीतिवचन की पुस्तक को कैसे आकार दिया, और यह वास्तव में हमें वापस जाकर यह देखने की अनुमति देता है कि वे इन चीजों को कैसे जोड़ रहे हैं। हम वास्तव में उसका हाथ देख सकते हैं और उसकी करतूत देख सकते हैं। इस प्रकार एक ही कहावत के भावात्मक और कथन दोनों स्तरों पर अर्थ होता है। आपको एक कहावत का अर्थ और उसका लेखकीय अभिप्राय समझने की आवश्यकता है। जब लेखक ने वह कहावत चरितार्थ की तो वह क्या सोच रहा था? लेकिन आपको संपादक के अर्थ के संग्रह के बारे में भी सोचने की जरूरत है, और कैसे संपादक न केवल अपने अर्थ के संदर्भ में शब्दों को एक साथ रख रहा है, बल्कि वह अब कहावतों को एक साथ रख रहा है, नीतिवचन की बड़ी इकाइयां, और वह उन्हें एक साथ जोड़ रहा है। और इसलिए आपको यह देखने की जरूरत है कि कैसे एक कहावत दूसरे पर प्रभाव डालती है और यह उनके साथ कैसे बातचीत करती है। और इसलिए यह आपको उच्च स्तर की कल्पना और उच्च स्तर की समझ प्रदान करता है। और इसलिए संदर्भ कहावत जोड़े में अर्थ निर्धारित करता है। जब आप जोड़ी को एक साथ देखते हैं तो आप कहते हैं, हम वह दूसरे के साथ क्या करने की कोशिश कर रहा है। पहले वाले ने दुष्टों से यह और वह करवाया और दूसरे ने, और यह सब आर्थिक था। और फिर दूसरा, वाह वह यहाँ और अधिक बुद्धिमानी की शर्तों पर जा रहा है। और इसलिए वह कह रहा है, हाँ अर्थव्यवस्था अच्छी है लेकिन बुद्धि बेहतर चीज है। तो यह मूल रूप से हमें संपादक का हाथ देखने की अनुमति देता है। और यह महत्वपूर्ण है कि वाक्यात्मक कहावतें पढ़ते समय सावधान रहें और जोड़ियों के बीच की बातचीत में जोड़ियों की तलाश करें। लेख की यह मंशा महत्वपूर्ण है, और हमें लेखकों और पृष्ठभूमि आदि की संस्कृति के साथ काम करने की जरूरत है। हाँ, कहावत का लेखक कौन है? इस कहावत के साथ कई बार हम नहीं जानते कि लेखक कौन है। कहा जाता है कि सुलेमान ने 3000 लिखे थे, लेकिन हमारे पास 400 से भी कम हैं। लेकिन साथ ही वह संग्रहकर्ता जिसने इन चीजों को एकत्र किया और उन्हें एक साथ रखा, हमें इसमें भी उसके हाथों का अनुसरण करने की आवश्यकता है। और इसलिए जोड़ी इकाई, तो मैं बस इतना कह रहा हूं कि जब आप नीतिवचन पढ़े तो जोड़ियों के लिए अपनी आंखें खुली रखें। जोड़े हैं। मुझे यहां एक जोड़ी चश्मा मिला, उनमें से दो, और फिर अचानक आप कहते हैं, हम वहां दो हैं। और इसलिए आप कहावतों को देखना शुरू करते हैं। हाँ, आपके पास एक ही कहावत है, लेकिन कभी कभी आपको पहली कहावत आदि पर एक अलग दृष्टिकोण देने के लिए दूसरी कहावत की तलाश करनी पड़ती है। इसलिए प्रस्तुति से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, और मुझे आशा है कि इसने नीतिवचन की पुस्तक को समझने के कई द्वारों में से एक और द्वार खोल दिया है। धन्यवाद। यह डॉक्टर टेड हिल्डेब्रांट हैं, जो नीतिवचन युग्मों पर अपने शिक्षण में हैं। यह सत्र संख्या 2 है, 5 जोड़े विस्तार से, नीतिवचन 26.45, नीतिवचन 15.89, नीतिवचन 10.16-17, नीतिवचन 13.21-22, नीतिवचन 15:01 और 2 जोड़ीदार तकनीकों के साथ।